बोल सियावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुट वंशी वाले की। अमृत का पान प्रारंभ होने में कुछ ही समय शेष रहा है, शीघ्रता से अपने अपने आसन पर आकर के विराजमान हो जाना चाहिए।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।
हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।
हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।
हे नाथ
नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव।
हे नाथ नारायण वासुदेव।
नाथ नारायण वासुदेव
भगवान की कोई निरतिशय कृपा होती है तब श्रीमद् भागवत में ये प्रेम की लीलाओं को सुनने का सुअवसर प्राप्त होता है। बहुत बड़ी भारी कृपा होती है। अब शब्द तो वही लाने पड़ेंगे जिन शब्दों से हम लौकिक व्यवहार देखते हैं, परंतु भाव वो नहीं होते हैं। इस प्रेम की लीला में भाव की तरफ देखना है, उस भाव की कितनी दिव्यता है, कितनी विचित्रता है। अब वो कथा आ रही है। हम जितने ऊंचे भाव से ये सुनेंगे उतना हमारा स्तर ऊंचा होगा। कथा तो अपनी जगह है ही और भगवान की लीला तो होती रही है, हो रही है। जिन लीलाओं को हम लोग यहां सुनते हैं ये लीलाएं हो रही है संसार में। ब्रह्मांड अनेक है, अनंत है। किसी न किसी ब्रह्मांड में कोई न कोई लीला होती रहती है। ये पृथ्वी इतनी थोड़ी है, किसी ब्रह्मांड में और ब्रह्मांड में बहुत पृथ्वियां हैं और सब जगह भगवान की लीला हो रही है। उसमें प्रेम की लीला यहां अपने लोग सुन रहे हैं, वहां हो रही है। तो इसमें भाव की मुख्यता है। और अब जो ये रासलीला का प्रसंग है इसकी भूमिका सुनिए आप। सुखदेव जी महाराज कभी आगे पीछे की भी लीला बोल देते हैं, ये बात भी आपको सुनने को मिलेगी। आगे की लीला पहले बोल देते हैं और जो लीला आगे कहनी चाहिए वो पहले बोल देते हैं। पहले बोलने वाली को आगे बोलेंगे, पीछे बोलेंगे, ऐसा चलता है इसमें। इससे सिद्ध होता है कि हमारे सुखदेव जी महाराज कथावाचक बनकर के कथा नहीं कह रहे हैं और कथावाचक होकर के कथा कहनी भी नहीं चाहिए। एक तो कथा का श्रोता हुआ, श्रोता बनते हुए कथा कहना चाहिए, श्रोत्री भाव से कथा कहनी चाहिए। और दूसरा कथा के साथ एक होना चाहिए। कि हल्ला करते हैं उनको मना करो ना, कि आपको बात करनी तो पीछे करो। पता तो है नहीं बात का कितना बुरा असर पड़ता है। तो अब जो ये कथा है, जो सुखदेव जी महाराज वक्ता बनकर के नहीं, श्रोता बनकर के भी नहीं, प्रेमी बनकर के कथा कह रहे हैं, बड़ी विचित्र कथा है। दिखने में कुछ नहीं है, भाव में बड़ी विचित्र है। जैसे हीरा होता है वो इतना सा होता है, पर कीमत देखो उसका, भाव देखो, अचंबा होता है। कोई कहता है ये इतना सा हीरा है साहब, ये 5 लाख का है, 5 लाख का। अब इतना सा पत्थर है, हीरा और है क्या, 5 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का हीरा है, आश्चर्य होता है। ऐसे ही दिखने में कथा बहुत विचित्र है, शब्दों में और ढंग से आई हुई है, पर भाव में इतनी विचित्र गहरी है। एक बार इसमें प्रवेश कर ले वे, फिर उस आदमी के बस की बात नहीं, वो निकल जाए। ऐसी भागवत की कथा है। पहले तो आपके मन में ये झांकी बसी गई कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, ये तो कीर्तन हो रहा था। कामधेनु ने दूध से और इंद्र ने ऐरावत हाथी के सूंड के जल से भगवान का अभिषेक किया, और ऐसी दिव्य मूर्ति का दर्शन हमारे अनेक अनेक संत महापुरुषों ने, ऋषि मुनियों ने किया। वहां से सब अपने अपने स्थान पर चले गए। एक बार की बात है कि एकादशी का दिन था, नंद जी ने उपवास किया था, और द्वादशी की घड़ियां जब लगी तो वे यमुना नदी में स्नान करने गए। स्नान का समय था तो ब्राह्मी समय, ब्राह्मी वेला, ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त के लिए बताया था कि सूर्योदय से 3.5 घंटा पहले का जो समय है, माने 3.5 घंटे तक का समय है। सूर्य उदित होता है उससे 3.5 घंटे पहले से ये ब्राह्मी वेला प्रारंभ होती है, और सूर्योदय होने पर फिर वो समाप्त हो जाती है। फिर उषक काल आता है, फिर प्रातः काल आता है, फिर मध्यान्ह काल आता है, फिर अपराह्न काल आता है, फिर सायंकाल आता है, फिर रात्रि काल। ऐसे एक दिन में कैसा परिवर्तन होता है। तो ब्राह्मी वेला, ब्राह्म मुहूर्त होता है सूर्योदय से 3.5 घंटा पहले से। हमारे नंद जी महाराज जब स्नान करने गए तो वरुण जी के सेवकों ने उनको पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये ब्राह्मी वेला नहीं है, ये आसुरी वेला है, और पकड़ करके वरुण देवता के पास में ले गए जल के अंदर, और वहां उनको कैद खाने में डाल दिया। भगवान को ये पता चला कि हमारे पिताजी जल में स्नान करके आए नहीं है, तो जरूर कोई न कोई विशेष बात हुई है। भगवान वरुण देवता के वहां पहुंच गए तो वरुण देवता ने बड़ा भारी उत्सव मनाया, आनंद मनाया। अरे हमारे यहां भगवान कृष्ण आ गए। अब वो साष्टांग प्रणाम करता है, माला पहनाता है, टीके लगाता है, और बड़ी उनकी स्तुति करता है कि महाराज हमारे सेवक को मालूम नहीं था, उसने अपनी गलती से ब्राह्मी वेला का अनादर किया और उसको आसुरी मेला वेला मान करके आपके पिताजी को यहां ले आया, मरा क्षमा करना, क्षमा करना। आप पिता के प्रति बहुत भक्ति रखने वाले हैं कृष्ण, गलती तो हमसे हुई है, पर हम बहुत बड़ा अपराध भी नहीं मानते हैं। देखो इसमें अपराध शब्द नहीं दिया, अपराध शब्द इंद्र ने तो कहा है, नाग पत्नियों ने भी कहा है अपराध है सोढ़व्य है, पर इन्होंने अपराध नाम नहीं कहा। अपराध में और गलती में थोड़ा अंतर होता है, जो जानबूझ करके गलती की जाए वो अपराध होता है, जानबूझ करके करे। और एक होता है वो जानबूझ करके नहीं, अनजाने में हो गया है, पर ध्यान नहीं रहा। तो इनका हमारा ध्यान नहीं रहा, पर हम किसको अच्छा भी मानते हैं कि आज आपके दर्शन हो गए। जहां भगवान की पूजा हो रही थी वहां उस जेल खाने के अंदर से नंद जी ने सब ये नजारा देखा, तो नंद जी को लगा कि अरे मेरा बेटा तो साक्षात अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमेश्वर है। कल आपने सुना ना कि यशोदा जी को कैसे भगवान का ऐश्वर्य ध्यान में आया, यही ऐश्वर्य हमारे नंद जी को आज हो गया, ऐश्वर्य ज्ञान। ऐश्वर्य ज्ञान के बाद भगवान भी अपनी लीला फिर वहां से समेट लेते हैं। भगवान ने देखा कि ऐश्वर्य का ज्ञान हो गया इनको, नंद जी को लेकर के भगवान आ गए ब्रज में। अब हमारे नंद जी तो एकदम उदास उदास रहने लगे, लोगों के बीच में बैठते हैं तो थोड़ी थोड़ी देर में वे अपने रुमाल से आंख पोंछते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में बात करते करते चुप हो जाते हैं, न वो पहले जैसी मुस्कुराहट है, न वो पहले जैसा ठहाका है, वो उन्मुक्तता समाप्त हो गई नंद जी की और खोए खोए से रहे। एक दिन सारे ब्रजवासियों ने नंद जी को घेर के पूछा, नंद जी आजकल आप कुछ खोए खोए से गुम गुम से अपने आप में अकेले से कैसे रहते हो, क्या बात है? तो नंद जी तो एकदम बस बिखर गए, एकदम रोने लग गए कि क्या हुआ नंद जी। नंद जी ने कहा कि जिसको बड़े बड़े देवता लोग वरुण वगैरह भी चरणों में साष्टांग प्रणाम करते करते अघाते नहीं है, और जिनकी स्तुतियों के लिए धारा प्रवाह शब्दावली निकल करके भी पूर्ण नहीं हो पाती, उस अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमेश्वर के मैंने कान पकड़ के खींचे, मैंने उसके कोमल कपोलों पर कभी कभी थप्पड़ भी लगा दी, डांट भी दिया, मुझे क्या मालूम था कि ये ऐसा सर्वेश्वर भगवान ही है। क्या हुआ नंद जी आपको कि मैं सत्य कहता हूं, मैं तो वरुण लोक में गया तो वहां का ऐश्वर्य देख करके दंग रह गया। अब देखो सब लोग शांत होकर के सुन रहे थे। अब इस कथा में कथा आती है, सुखदेव जी महाराज यदि उस कथा को विस्तार से कहते तो शायद आगे की कथा कह नहीं सकते थे, पर सुखदेव जी महाराज थोड़े थोड़े शब्दों में कह गए। आप लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, उससे भी ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। सब लोग नेत्र बंद किए हुए नंद जी से सुन रहे थे बात, तो सबके मन में आया, अरे कृष्ण यदि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, परात्पर परब्रह्म परमेश्वर है, तो वो कृष्ण हमको अपना वैकुंठ क्यों नहीं दिखा देता। सबके मन में इच्छा हुई, छोटे बड़े सबके मन में है। परीक्षित उन लोगों को ये मालूम थोड़ा ही था कि वो अंतर्यामी है और सबके मन की बात जानता है, पर थे तो अंतर्यामी। सबके वे सूक्ष्म शरीरों को इकट्ठा करके सूक्ष्माम उपाध्यास्यत अधीश्वर है, सबके सूक्ष्म शरीरों को लेकर के भगवान वैकुंठ में पहुंच गए। जैसे हमारा सूक्ष्म शरीर स्वप्न देखता है, ऐसे ही आज ये भगवान के भक्तगण अपने सूक्ष्म शरीरों से वैकुंठ में पहुंच गए। हमारे सूक्ष्म शरीर स्वप्न में जाते हैं तो हमारी वृत्तियां काम करती हैं, और यहां जो सूक्ष्म शरीर ब्रजवासियों के वैकुंठ में गए, वहां भगवान की वृत्ति काम कर रही थी। इसलिए हमारा स्वप्न दृश्य मिथ्या होता है और भगवान के द्वारा दिखाया हुआ उनका वैकुंठ बिल्कुल पूर्ण सत्य होता है। बड़े ठाट बाट के साथ में वैकुंठ के दर्शन किए उन्होंने। वैकुंठ में सब जगह तो आदमी घूम नहीं सकता, वैकुंठ में भी एक स्थान बना हुआ है, विशाल स्थान, जहां अनादि काल से भक्तजन निवास करते हैं। आगे के भक्त आगे बैठते हैं, पीछे के भक्त पीछे बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं सब लोग। तो पीछे ही पीछे ब्रजवासी चले गए और वहां पूछने लगे कि ये किसका मंदिर है। कहने लगे कि ये वैकुंठनाथ भगवान का मंदिर है। वैकुंठनाथ भगवान होंगे, दर्शन तो करना ही है। कितने बजे दर्शन होंगे कि बस थोड़ी देर में कपाट खुलने ही वाले हैं। तो यू मंदिर के ऊपर पर्दा लगा हुआ, एक पर्दा हटा और फिर दूसरा पर्दा हटा। वो भगवान के पार्षद, भगवान के भक्तगण बोलने लगे कि हे भगवत प्रेमी सज्जनों, अब तीसरे पर्दे के हटते ही आप लोगों को वैकुंठनाथ भगवान के दर्शन होंगे। बड़ी सावधानी से आप दर्शन करेंगे। सब यूं सावधान हो गए, हाथ जोड़े जोड़े खड़े हो गए और देख लगे कहीं दर्शनों से हम बाकी न रह जाएं। इतने में ही तीसरा पर्दा हटा, बहुत सुंदर दिव्य मणियों से सुशोभित एक सिंहासन, और उस सिंहासन के ऊपर लोगों को लगता है कि वैकुंठनाथ भगवान विराजमान, और हमारे ब्रजवासी बोलते हैं कि अरे ये तो हमारा कृष्ण विराजमान, उस कृष्ण को वहां देखा। कृष्ण को देखने पर और लोग तो भाई हाथ जोड़े जोड़े बड़ी विचित्र विचित्र ढंग से प्रार्थना करते हैं, पर हमारे ब्रजवासी उछल के थे, ए कन्हैया तू यहां आकर बैठ गया, चलो आओ अपने गुल्ली डंडा खेले, चलो आओ मक्खन खाएं, चलो आओ बंसरी बजाएं, यहां क्यों बैठा है। इतने में लोगों ने डांट टपट की, कौन हो तुम, कहां से आए हो, क्यों आए हो, यहां वैकुंठ की मर्यादा कुछ और होती है, कैसे बोलते हो आप कि ये तो हमारा सखा है। अरे सखा भाव की उपासना तुम्हारी उपासना काल में रही होगी, वैकुंठ में आए हो, मालूम है यहां उपास्य देव की प्रधानता है, वहां उपासकों की मुख्यता है, यहां उपास्य की मुख्यता है। वहां पृथ्वी पर तुम उपासना काल में रेतु से बोल सकते थे, पर वैकुंठ के अंदर उपास्य की प्रधानता है, यहां आप रेतु से नहीं बोल सकते, यहां सम्मान से बोलना चाहिए। तो कहा आ जाओ, भगवान ने मना किया, क्यों आप पराधीन हो, पराधीन हो, आप हमसे यहां आकर मिल भी नहीं सकते, तो जिस कक्ष में आप रहते हैं क्या उस कक्ष में आकर हम मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते। क्या यहां आप स्वतंत्र नहीं हैं? नहीं। माखन चोरी नहीं करोगे? नहीं। गिल्ली डंडा नहीं खेलोगे? नहीं खेलेंगे। बोलेंगे भी नहीं? नहीं बोलेंगे। मिलोगे भी नहीं? नहीं मिलेंगे। तो फिर कन्हैया हमको तो वापस पृथ्वी पर ही भेजो, जहां हम तुमसे मिलेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, वहीं ले चलो। तो वे सब के सब यू वहां बैठे हुए तो थे ही, नेत्र खोल के देखते हैं, आहो सब के कपड़े गीले हुए हुए हैं। इतना उनको आनंद का अनुभव हुआ, इतना नेत्रों से उनके प्रेमाश्रु बहे, सबके कपड़े गीले हुए थे। ते तु ब्रह्म रथम नीता मग्ना कृष्णेन च उद्धृता। वो ब्रह्मानंद में डूबे हुए थे, भगवान ने उनको खूब डुबकियां लगा लगा करके स्नान करके और वापस ब्रज में भेज दिया। सबको बड़ा आनंद का अनुभव हुआ। देखो ऐसा प्रसंग कहने के बाद अब रासलीला चालू करते हैं। इतनी लीलाओं को सुनाने का अर्थ ये हुआ कि भगवान की रासलीला के लिए सब ब्रजवासियों को बैकुंठ के दर्शन करने पड़े, परंतु रासलीला तो बैकुंठ में भी नहीं होती है, पृथ्वी पर ही होती है। उसके लिए भगवान के दर्शन, भगवान का भाव पूरा बन जाए, तब आदमी रासलीला का प्रसंग सुन सकता है। ये मामूली बात नहीं है। और रासलीला का सबसे पहला शब्द क्या है? भगवान न पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रित। भगवान का नाम सबसे पहले रासलीला में। इसका अर्थ है कि इस लीला में केवल भगवान की मुख्यता है। रासलीला में बिचारी गोपियां जानती नहीं थी कि रासलीला क्या होती है। भगवान ने अपना प्रेम प्रदान करने के लिए रासलीला की, अपना प्रेम प्रदान करने के लिए। देखो प्रेम का रसास्वादन करने वाला दो नंबर का प्रेमी होता है, और प्रेम रस का पान कराने वाला एक नंबर का प्रेमी होता है। तो गोपियां तो कहती है कि भगवान कृष्ण ने हमको प्रेम रस का प्रदान किया। भगवान कहते हैं कि गोपियों तुमने यमुना नदी में स्नान करके कात्यायनी की पूजा करके हमको प्रेम प्रदान किया। कौन प्रेम में बड़ा है, कौन छोटा है, कह नहीं सकते हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। भगवान ने भी, अब यहां अपील लगाया ना, भगवान ने भी यह रासलीला की। अर्थात ब्रजवासियों ने अपनी मर्जी से बैकुंठ का दर्शन करना चाहा, और भगवान यहां रासलीला करना चाहते हैं। रासलीला बैकुंठ बड़ा है कि पृथ्वी बड़ी है? पृथ्वी बड़ी है इस हिसाब से तो, क्योंकि बैकुंठ में रासलीला नहीं होती। रासलीला तो पृथ्वी पर ही होती है। भगवान ने दिव्य रात्रियों का निर्माण किया, रासलीला दिन में क्यों नहीं की? क्योंकि रासलीला सर्व दृग्गोचर नहीं है। अंधेरे में क्यों की? ये अंधेरा किसके लिए है? ये अंधेरा भगवान के लिए नहीं है, और भगवान की रासलीला में पात्र भूता गोपियों के लिए भी नहीं है। ये अंधेरा प्रेम तत्व को न जानने वाले लोगों के मन का अंधेरा है, रात्रि का अंधेरा नहीं है। तो भगवान ने क्या किया कि ये कालमान वाली रात्रि इस रात्रि को नहीं, अलग से दिव्य रात्रियां मनाई। दिव्य रात्रि ये जो सूर्य के अस्त के बाद रात्रियां होती हैं, ये भगवान ने रात्रियां नहीं ली, भगवान ने दिव्य रात्रि बनाई जिसमें हर कोई आदमी शामिल ना हो सके, देवता भी ना आ सके, कोई ना आ सके। काल के अंतर्गत की रात्रियों में तो जितने काल के प्राणी है कोई भी आ सकता है, पर भगवान के दिव्य रात्रियों में भगवान के संकल्प के अलावा दूसरा कोई जा ही नहीं सकता है। भगवान पिता रात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिका, और शरद ऋतु में ये चंपा का फूल कभी नहीं खिलता हो। चंपा के फूल खिलते हैं फागण में, चैत्र में, फागण में खिलना चालू होते हैं, लेकिन चैत्र और चैत्र बैसाख तो खूब बढ़िया खिलते हैं, फिर बंद हो जाते हैं। ऐसी सुगंध आती है, एक वृक्ष यहां हो दूर दूर तक सुगंध जाती है। भगवान की जो दिव्य रात्रियां हैं उनके अंदर शरद ऋतु के अंदर बताओ चंपा का फूल, इसका मतलब है रात्रि दिव्य है तो वहां की वृक्षावली भी दिव्य है और वहां के फूलों की गंध भी दिव्य है। ऐसे समय में भगवान ने योग माया का आश्रय लेकर रासलीला करने का मन किया कि रासलीला करनी चाहिए, ये भगवान का संकल्प। रात्रि के अंदर चंद्रमा पूर्ण अखंड मंडल था, पूर्णिमा का चंद्रमा, और उस पूर्णिमा के चंद्रमा में बड़ा आनंद, बड़ा आह्लाद, देखते ही अच्छा लगे। पूर्णिमा का चंद्रमा भाई स्वाभाविक ही सबको प्रिय लगता है, इसलिए सतर्षणी नाम उद्गात सुचो मृजन, लोगों के शोक को दूर करने वाला था। और वो चंद्रमा ऐसा है, दृष्ट्वा कुमुदवंतम अखंड मंडलम रमाननामम नवकुंकुमारुणम, जैसे कोई लक्ष्मी जी का मुख ही हो, मुखमंडल हो ऐसा। सारी वनराजियां खिल गई, वहां भगवान जंगल में जाकर ध्यान से सुनना रहा, और जिनके पास पुस्तक है वो इस पद को ध्यान से पढ़ना कि जगऊ कलम वाम दृशाम मनोहरम, ये पद है ना, ये खास ध्यान देने का है। सीधा सीधा अर्थ है कि भगवान ने वहां पर शब्द किया कलम जगऊ, कलम जगऊ, और वाम दृशाम मनोहरम, स्त्रियों को जो अच्छा लगे ऐसा शब्द उन्होंने किया, पर ऐसा नहीं है। ये तो शब्द का अर्थ तो है ही, भावार्थ में जाना अपने को, भागवत के भाव में। भाव में ये है कि देखो जब मंत्र बोलते हैं अपने लोग, जब एक तो रीम बोलते हैं, एक क्लीम बोलते हैं, तो ये क्लीम शब्द आता है, वो क्लीम है वो प्रेम वर्धक होता है, रीम होता है वो पाप हरने के लिए बोलता है, ओम रीम क्लीम ऐसे करके आगे जिनके लिए होता है वो शब्द होते हैं, ओम रीम क्लीम चामुंडाई बिच्चे, ओम रीम क्लीम चामुंडाई बिच्चे, ऐसे ऐसे शब्द आते हैं, मंत्र आते हैं। तो रीम माने हमारे पाप को, दुख को हरो, और क्लीम माने आप में हमारा अनुराग हो। तो देखो वहां वाम दृशाम मनोहरम, वाम दृशाम का अर्थ हुआ कि संसार से जो उलट गए हैं, उल्टे हो गए हैं, और उल्टे होकर के जो भगवान की तरफ देखने वाले हैं उनके हृदय में एक प्रेम का संगीत छेड़ने के लिए भगवान ने वो बंसरी बजाई, वो क्लीम किया उन्होंने। तो कलम जगो माने कह और ले, उसकी जगह आया प्रेम वाचक शब्द, कलम जगऊ माने क्लीम जगऊ। अब जो वो बांसुरी बजाई उन्होंने, देखो बांसुरी तो सबके लिए बजाई थी, बांसुरी के नाद के लिए आपने पहले सुना ना बांसुरी कितनी बढ़िया बजाई भगवान ने, चर अचर सब पर प्रभाव पड़ा। पर यहाँ अब जो है भगवान ने जो दिव्य रात्रियां बनाई उसका जो है वेणुनाद भी बड़ा दिव्य था और दिव्य ही गोपियों के मन में भगवान से मिलने की आई। तो कृष्ण गृहीत मानसा, सबके मन को कृष्ण ने हर लिया और वे गोपियां अपने अपने स्थान से रवाना हो गई और किसी ने किसी से कुछ पूछा नहीं, किसी ने किसी को देखा भी नहीं। अन्योन्यम अलक्षितोद्यम, भगवान का प्रेम कैसा होना चाहिए हो, बड़ा गोपनीय होना चाहिए, बहुत गोपनीय बनाया। उपमा देने की जरूरत नहीं है, उपमा देना तो अच्छा नहीं लगता, परंतु उपमा दी भी है कि जैसे संसार में स्त्री और पुरुष का अनुचित प्रेम गोप्य होता है वैसे गोपनीय बताया है। स्त्री का और पुरुष का जहां आपस में प्रेम होना नहीं चाहिए, जहां अनुचित प्रेम है, वहां वो जैसे प्रेम गोपनीय होता है। स्त्री अपने प्रेम को कभी नहीं बताती, पुरुष अपने प्रेम को नहीं बताता, ऐसा वो गोपनीय प्रेम होता है, उससे भी विलक्षण गोपनीय। हम लोग भगवान से थोड़ी सी कोई नित्यनेम वगैरह पाठ पूजा करके प्रेम का संबंध करते हैं तो दुनिया को बताना चालू कर देते हैं, हम इतना पाठ करते हैं, हम इतना जप करते हैं, हम इतना ये करते हैं, ये एक बताने की चीज है ही नहीं, बहुत गोपनीय होता है। एक मुसलमान थे, वो नमाज पढ़ रहे थे, एक उल्टा स्त्री थी, वो दौड़ी दौड़ी जा रही थी, तो वो नमाज पढ़ते समय में मुसलमान सज्जन यूं नीचे झुके ना, तो वो उल्टा स्त्री दौड़ करके उनकी पीठ पर चढ़ करके और दीवार पर चढ़ करके आगे चली गई। तो मुसलमान सज्जन को बहुत बुरा लगा कि देखो मैं तो खुदा के लिए नमाज अता कर रहा था और ये हमारे पीठ पर चढ़ के गई, बड़ा अपमान किया हमारा, आने दो मैं बात करूंगा। थोड़ी देर के बाद वो स्त्री वापस उसी मार्ग से आई तो उस मुसलमान सज्जन ने कहा कि भाई तुमने हमारा अपमान किया, हम खुदा के लिए नमाज अदा कर रहे थे और तुम आव देखा न ताव हमारे पीठ पर चढ़ करके दीवार पर चढ़ के फांद करके तुम भग गई, क्यों किया तुमने ऐसा? उसने कहा मैंने ऐसा किया क्या, क्या मैंने ऐसा किया? हाँ तुमने किया, तभी तुम्हें कह रहा हूं। तो कहा कि आप तो खुदा के नूर हो और खुदा के लिए नमाज अदा कर रहे थे, आप खुदा में मोहब्बत कर रहे थे, मैं एक पुरुष में मोहब्बत करी हुई थी तो मुझे इस बात का ख्याल नहीं रहा, उस मोहब्बत में इतनी डूबी हुई थी कि तुम्हारे कंधे पर मैं चढ़ गई और फिर दीवार पर चढ़ गई और आगे मैं चली गई, इतना मुझे होश नहीं था। आप खुदा में मोहब्बत करते हुए आपको इस बात की जानकारी कैसे हो गई, आपको ये कैसे मालूम हो गया कि मैं आपके कंधे पर चढ़ी, पीठ पर चढ़ी? उसने कहा ये बात बिल्कुल ठीक है, जब नियत हमारी खुदा में ही रहनी चाहिए तो इस बात का बोध क्यों हुआ, मेरे नमाज अदा करने में कुछ गलती हो गई। तो भाई जब एक पुरुष में अनुचित प्रेम होता है उसमें भी व्यक्ति इतना छिपा हुआ और इतना वो मशगूल रहता है और प्रकट भी होना नहीं चाहता, भगवान में जब प्रेम होता है उसको लोग प्रकट कर देते हैं, उसके द्वारा उसकी भक्ति का रहस्य ही होता है, किसी को बताने की नहीं होती। ये बात बताने के लिए गोपियां अपने घर से रवाना हुई और अन्योन्यम अलक्षितोद्यमा, किसी ने किसी को कुछ नहीं कहा, सीधी वे उस बांसुरी की आवाज सुनते ही रवाना हो गई, क्योंकि उनका मन उनके हाथ में नहीं था। सुनो परीक्षित, कोई गाय दू रही थी, गाय दूते दूते रवाना हो गई। अरे गाय के पैर तो खोल दो भाई, नेतना से बांध रखा है, पूरी दू तो लो गाय को, कम से कम बछड़े को तो छोड़ देते, कुछ नहीं याद ही नहीं आया ये। और कोई ऐसे हैं कि जो दूध उफन रहा है, अभी दूध अभी उफनना चालू हुआ रवाना हो गई, उनको ये वृत्ति नहीं रही कि दूध उफन रहा है, दूध को नीचे उतार दूं। कोई पति को भोजन करा रहे हैं तो भोजन पुरसे पुरसे रवाना हो गई। देखो कल आपने सुना था कि भगवान का जब जन्म हुआ, यशोदा जी के यहां आए भगवान, तो सारी गोपियां अपना श्रृंगार करके आई, लेकिन यहां अपना सब श्रृंगार छोड़ के जा रही है। कोई काजल लगाई है तो आधे अंग में थोड़ा काजल लगाया, छोड़ के रवाना हो गई। आंख में आधी जगह अंगुली गई है, अभी ये अंगुली ये आंख तो खाली है, रवाना हो गई। एक कान में कुंडल लगाया, दूसरे में बाकी है, वो भी छोड़ दिया। अरे लापसी बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, उसमें पानी डालने का बहुत ध्यान रहता है, न तो थोड़ा सा कच्चा रह जाए आटा तो उसमें पानी डाला जाता है, न ज्यादा सिक जाए तो पानी डाला, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और पानी डालने के बाद तो फिर हलवे को बहुत देर तक हिलाना पड़ता है, उसको बहुत देर तक हिलाना पड़ता ना, इसलिए उसका नाम हलवा है। उन्होंने पानी डाल दिया, पानी डालती रवाना हो गई। ऐसी ऐसी क्रियाएं दी हैं कि जिन क्रियाओं को छोड़ा नहीं जाता प्राय, पर हमारी गोपियां ऐसी भगवान की वाणी में, उसके क्लीम में ऐसी डूब गई उस प्रेम मंत्र में कि छोड़ना छोड़ने लायक क्रिया भी उनको याद ही नहीं रही, रवाना हो गई। और इतना ही नहीं, व्यत्यस्त वस्त्राभरणा, उनके कपड़े भी उनके अस्त व्यस्त ही हुए थे, किस कपड़े को कैसे पहनना चाहिए यह भी उनको होश नहीं रहा और रवाना हो गई। और रवाना हुई तो देखो किसी ने किसी को टोका नहीं, हजारों की संख्या में रवाना हुई, आपस में मिली भी होंगी पर वो मिली हुई भी न मिली के समान थी, क्योंकि सभी का ख्याल कृष्ण में था। अब इस सखी ने क्या पहन रखा है, इस सखी ने कैसे बाल बना रखे हैं, इसने कैसे ओढ़ना ओढ़ रखा है, इसने कैसे अपने कपड़े पहने, कुछ पता नहीं। और कृष्णांतिकम ययु, श्री कृष्ण के पास में आई, पतियों ने मना किया, कहां जाती हो भाई, तो कहां जाती हो इस बात को कौन सुने, सुनने वाला तो कृष्ण के पास बैठा है, माने ये हमारा मन, ये हमारा स्वरूप तो कृष्ण के पास है, वो प्रश्न करते तो करते रहे, केहू को जबरदस्ती रोका, कमरे में बंद कर दिया, अंदर ही अंदर तिल मिला उठी, वो विरह में, कृष्ण भगवान के विरह में तिल मिला उठी। उस विरह में उनके जितने रजोगुण थे, तमोगुण थे, तमोगुण रजोगुण के भाव थे, सब उनके भाव वहीं पर समाप्त हो गए, जल गए उसमें विरह में। देखो भगवान के लिए विरह होता है, उस विरह का लाभ क्या होता है, जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। गोपियों का ये विरह दिव्य था, पाप तो कुछ था नहीं, और विरह की ये दिव्यता थी कि सामान्य रजोगुण तमोगुण का भाव भी उनमें नहीं रहा, और उन्होंने मन से भगवान का ध्यान किया और एक विलक्षण आनंद पैदा हुआ, उस आनंद में उनका सत्व भाव भी समाप्त हो गया। ऐसे परब्रह्म परमात्मा के प्रेयसी होकर माने उनके साथ प्रेम करने वाली होकर वो वास्तव में सब बंधनों से रहित तो होकर भगवान को प्राप्त हो गई। राजा ने प्रश्न किया कि महाराज भगवान को भगवान तो समझा नहीं था, फिर भगवान कृष्ण को तो उन्होंने अपना एक पति तो माना था, ब्रह्म से तो युक्त माना नहीं, फिर उनकी संसार से निवृत्ति कैसे हो गई, उनकी मुक्ति कैसे हो गई, उनको भगवत प्रेम मिल कैसे गया, क्योंकि वे तो कृष्ण को बाहर की सुंदरता से ही पसंद कर रही थी। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि देखो परीक्षित, मैंने तुमको सातवें स्कंद के पहले अध्याय में ये बात बता दी थी कि भगवान है ये निर्विषय है, और इनमें जो प्रेम होता है वो नैर्विषयिक प्रेम होता है, नैर्विषयिक बड़ा दिव्य प्रेम होता है, कोई काम से, क्रोध से, लोभ से, स्नेह से कैसे भी प्रेम करता है वो भगवान में एक हो जाता है। कोई भगवान को पति मानता है, पति मानती है, तो पति मानने से उसके प्रेम में कोई अनुचितता नहीं आती है। क्यों नहीं आती है कि भगवान में अनुचित दोष है ही नहीं, इसलिए किसी भी भाव से करो भगवान से जुड़ जाना चाहिए। तो मैं तुमको ये बता रहा था कि वे गोपियां दौड़ी दौड़ी भगवान के पास आ गई, और अब भगवान से, भगवान ने उनसे बड़ी विचित्र बातें कही हैं। ध्यान से सुनना, देखो भगवान क्या बोलते हैं। यहां लिखा वाचा पेशरी विमोहयन, ऐसी भगवान मीठी मीठी बात करेंगे उसमें वो गोपियों को चक्कर में डाल देंगे। ये एक प्रेम की अवस्था होती है, प्रेम में सीधी साधी बात नहीं कही जाती, प्रेम में थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बात कही जाती जिससे प्रेम ज्यादा बढ़े। अब देखो आप सीधी सीधी बात में और उसमें क्या अंतर है, देखो आप प्रेम से इसको सुनते रहो। देखो भगवान कहते हैं आओ आओ गोपियां आओ, स्वागतम, आपका स्वागत है, बहुत अच्छा किया तुम आई। बोलो कैसे आई, क्या ब्रज में सब कुशल मंगल तो है, तुम अपने आने का कारण बताओ, इस रात्रि में क्यों आई तुम। अरे ये रात तो घनघोर रात्र है, इस घनघोर रात्रि में बड़े बड़े भयंकर प्राणी, डरावने डरावने प्राणी रात्रि में ही तो घूमते हैं। अरे जल्दी करो तुम ब्रज में चली जाओ, यहां मत रहो, तुम्हारे माता, तुम्हारे पिता, तुम्हारे भाई, तुम्हारे पुत्र, तुम्हारे पति तुमको ढूंढ रहे होंगे, उनको किसी आशंका में, किसी भय में मत डालो, और जल्दी से जल्दी तुम यहां से जाकर अपने स्थान पर चली जाओ। देखो जंगल तो तुमने देख ही लिया, यमुना नदी के किनारे आकर तुमने ये लहरों वाला जल प्रवाह भी देख लिया, देखो जंगल की कैसी शोभा है और वृक्षों की कैसी ये मदमस्त हवा है और फूलों का कैसा सुगंध है, सब तुमने देख लिया। अब जाओ भाई, अपने बच्चों को भी संभालो और अपने पतियों की सेवा करो। मेरे अंदर जो प्रेम होता है ये तो प्राय सब प्राणियों का एक स्वभाव है कि मेरे से प्रेम करते हैं। जो आदमी जहां भी प्रेम करता हुआ दिखता है मूल में मैं ही हूं, चाहे वस्तु से प्रेम करो चाहे व्यक्ति से प्रेम करो, मूल में मैं ही रहता हूं। तो ये तो सभी लोगों की आदत है, पर स्त्रियों को चाहिए कि अपने पति की सेवा करें, निष्कपट भाव से सेवा करें, पति के भाई बंधुओं की भी सेवा करें। और अपना पति भी दुशील हो, दुर्भाग्यशाली हो, जिसका आचरण भी अच्छा न हो, बूढ़ा हो, रोगी हो, गरीब हो, मूर्ख हो, तो भी उस स्त्री को अपना पति छोड़ना नहीं चाहिए। उससे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, यश की प्राप्ति नहीं होती, कल्याण की प्राप्ति नहीं हो सकती। ऐसे को छोड़ देता है, छोड़ देती है कोई, उसका कल्याण नहीं होता। तो जाओ, मेरे से यदि मिलना है, ध्यान से सुनना, मैं कहां मिलता हूं, जहां मेरी चर्चा होती है श्रवणात या ध्यानात, मेरा ध्यान करो या मेरी चर्चा सुनो या मेरे दर्शन करो, तीन ही है जगह मिलने की। तो तुम श्रवण करो मेरे विषय में, मेरी कथा सुनो, मेरी चर्चा सुनो, संतों के पास बैठकर मेरी बातें सुनो, और जो है ध्यानात, मेरे में ध्यान लगाओ। ये ज्यादा पास में रहने से तो प्रेम घटता है, ज्यादा पास नहीं रहना चाहिए, इसलिए तुम चली जाओ। कहते हैं इसमें भगवान ने क्या मोहित किया जी, ये तो सीधी सीधी बात है कि बता देंगे, कैसे मोहित किया सो बता देंगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं गोपियां जितनी उमंग से आई थी उनका संकल्प टूट गया। ताहा भग्न संकल्पा, उनके सारे संकल्प टूट गए। उन्होंने सोचा था कि जब हम जाएंगी तो कृष्ण ऐसे हमसे प्रेम से बोलेंगे, ऐसे हमको बैठाएंगे, ऐसी बात कहेंगे, वैसी कहेंगे, ये सब संकल्प उनका टूट गया। बड़ा बड़ी भारी उनको चिंता हो गई, नीचा मुख कर लिया और अपने चरणों के अंगूठे से पृथ्वी को खोदने लगी और झर 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 वो रोने लगी। फिर गोपियों ने अपने आंसू पूछ करके और रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से कहा, मैं विभोरहति भवान गदितो नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयास्तव पाद मूलं भक्ता भजस्व दुरवग्रहमात्यजस्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। हे सर्वव्यापक परब्रह्म परमात्म स्वरूप, ऐसी बात आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती है। सबको छोड़कर तो हम आपके पास आए, क्या उसका ये फल है कि आप भी हमारा त्याग करोगे? हम आपकी प्रेयसी हैं, हम आपकी भक्ता हैं, इसलिए भक्तों को तो भगवान भी चाहते रहते हैं, आप हमारा त्याग मत करो। हमारे पति, हमारे पुत्र, हमारे स्वधर्म, हमारे सुहृद वगैरह जिनके लिए आपने कहा है, तो वो उस दृष्टि से देखा जाए तो आप हमारे पति हो और आपकी सेवा में हम यहां बैठी है, तो आप ही के उपदेश का पालन कर रही है ना। आपने कहा कि जाओ अपने पति की सेवा करो, तो हमने आपको पति माना है, तो हम आपकी सेवा कर रहे हैं, तो आपके उपदेश का ही तो पालन कर रहे हैं। संसार के पतियों से तो कोई स्त्री आज तक सुखी नहीं हो सकी, क्योंकि ये तो सदा सुख दुख देने वाले ही होते हैं। आपने कहा चले जाओ और घर का काम धंधा करो, तो जाएंगे तो हम पैरों से जाएंगे, पैरों से हम चले तो जाएंगे, पर मन और हमारी इंद्रियां, हमारा भाव तो तुम्हारे यहां रहेगा ना, तो हम घर का काम कर नहीं सकेंगे, सेवा का काम कर नहीं सकेंगे। हम तो ये चाहती हैं कि तुम अपने अधरामृत का हमको पान कराओ, तुम थोड़ा हंसो, थोड़े अपने प्रेम की दृष्टि से हमें देखो, और हमारे अंदर जो एक रिच्छय है, रिच्छय बोलते हैं अनुराग, हमारे हृदय में जो सोया हुआ है उसको बोलते हैं रिच्छय, रित्छय अर्थात रिच्छय, रिच्छ है माने आपके प्रति जो हमारी प्रेमाग्नि है, उस प्रेमाग्नि को आप अपने हंसी से, अपने वाणी से, अपने गीत से, अपनी दृष्टि से उसको तुम शांत करो, नहीं तो तुम्हारे विरह में हम जल भुन करके राख हो जाएंगे। कृष्ण देखो तुमको सब पता है, तुम्हारे वक्षस्थल पर रहने वाली लक्ष्मी क्या तुम्हारे चरणों में रहने वाली तुलसी से डाह नहीं करती है? वो भी चाहती है कि तुम्हारे चरणों में ला करके रहूं। अरे वक्षस्थल बड़ा है या चरण बड़े हैं? परंतु लक्ष्मी जी को आपके चरण बड़े लगते हैं। क्यों? क्योंकि इन चरणों के अंदर एक विलक्षण आकर्षण शक्ति है। तो इस वक्षस्थल को छोड़कर के वो आपके चरणों में आना चाहती है। तो हे दुखहारी प्रभु, तुमने सबके दुखों को दूर किया है, तो हमारे भी एक आत्मा संतप्त हो रही है आपके बिना, हम आपकी दासी होकर रहना चाहती है, एक बार अपना सुंदर मुख और अपने कानों के कुंडलों से सुशोभित तुम्हारे जो कपोल हैं, उन कपोलों का प्रभाव जो तुम्हारे होठों पर पड़ता है, उन होठों से जो तुम्हारी हंसी निकलती है, वो हंसी और वो तुम्हारी दृष्टि और भाई वो आपका प्रेम भरा उठा हुआ हाथ, ये हमको बहुत प्रिय लगता है। संसार में ऐसी कौन स्त्री हो सकती है कि जो तुम्हारी बंसुरी को सुनने के पश्चात अपने घर में रह सके, अपनी जगह पर रह सके, और तुम्हारे स्वरूप को देखने के बाद ऐसी कौन सी स्त्री है जो तुम्हारे स्वरूप को छोड़ करके और वो अपने घर गृहस्थ में लगी रहेगी? पशुओं को देख लो कृष्ण, तुम पशुओं को देख लो, ये पशु भी तुम्हें देख देख कर तुम्हारा ये बंसुरी का नाद सुनकर ये भी पुलकित होते हैं, तो हम तो है ही क्या? इसलिए अपना प्रेम भरा हाथ हमारे सिर पर रखो, क्योंकि हमारा हृदय तुम्हारी प्रेमाग्नि में जल जो रहा है। ऐसा कर खूब रोने लगी, खूब रोने लगी। भगवान ने कहा गोपियों रोती क्यों हो तुम? कि देखो हम तो बड़ी मुश्किल से तुम्हारे पास आई है, तुम्हारे पास आना कोई सुगम थोड़ा ही है, कितने कितने प्रत्यवाय आते हैं, जाने कैसे पार हो गए तुम्हारे पास है, तुम जाने का नाम लेते हो? मैंने कब कहा जाने के लिए? अब आओ वापिस उन्हीं शब्दों पर आओ, देखो जो मूल भागवत लेके बैठे हैं वो आओ वापिस 18वें श्लोक पर वापिस आओ। भगवान कहते हैं वाचा पेशेर विमोहयन, जो 17वें श्लोक में कहा ना कि लुभावनी वाणी से, यू लुभावनी वाणी से। भगवान कहते हैं मेरी वाणी तो तुम सुनो पहले, मैंने क्या कहा है? स्वागतम, मैंने कहा कि मैंने यही कहा कि तुम स्वयं के पास आई हो, बहुत ठीक किया तुमने, स्वयं आगतम, तुम अपने स्वकी के पास आई हो, तुमको यही आना चाहिए था जहां तुम आई हो, उल्टा मैं तुम्हें धन्यवाद दे रहा हूं। और मैंने ये कहा कि रजनी ऐसा अघोर रूपा, ये बड़ी अच्छी रात है, इस रात में तो वो ही रहेंगे जिनका दिल बड़ा कोमल होगा, प्रेमियों की रात है ये, और प्रेमी लोगों के लिए रात है। अघोर सत्व निषेविता, मेरी बनाई हुई रात है तो इसमें कोई घोर प्राणी रहेंगे, और मेरी बनाई हुई रात है इसमें कोई जो है डरावनापन रहेगा? मैं तो निर्भय करने के लिए आता हूं, मेरा आश्रय लेने वाला सर्वथा निर्भय होता है, तो मेरा समय डरावने वाला कैसे होगा? तो रजनी ऐसा अघोर रूपा, अघोर सत्व निषेविता, इसलिए मैंने कहा कि व्रजम न प्रति आते है, ब्रज में मत जाओ, इह स्थेयम यही रहो, ब्रजम न प्रति आते है, उल्टा पुल्टा अन्वय है, तुम ब्रज में मत जाओ, इहस्तेयम् यही रहो। और हे स्त्रियों तुम सुमध्यमा, ये ध्यान देना सुमध्यमा, सुमध्यमा माने तुम्हारा जो वर्तमान काल है ये बहुत बढ़िया काल है, बहुत सुंदर श्रेष्ठ काल है। जितने मनुष्य हैं सब सुमध्यम है, जितने स्त्रियां हैं ये सब सुमध्यमा है। माने जो भूतकाल था वो तो बीत गया और भविष्यत काल अभी आया ही नहीं, ये मध्यम काल तो वर्तमान काल ही हुआ ना, तो ये वर्तमान काल तुम्हारा बहुत बढ़िया है कि तुम मेरी बांसुरी सुनने आई हो। इसलिए मैंने तो ये कहा है कि माता पिता भाई बंधु पति लोग तुमको न देख करके और माम विचिन्वंती, देखो माम माँ, माँ निषेध में भी आता है और माँ अपने लिए भी आता है, ये तुम्हारे भाई बंधु भी निहाल हो जाएंगे, ये तुमको ढूंढते ढूंढते आएंगे, जब तुम उनके घर नहीं जाओगी तो ये ढूंढेंगे तुमको, ढूंढेंगे तो माम विचिन्वंती, वो मुझे प्राप्त हो जाएंगे, मुझे ढूंढ लेंगे कि अरे ये कृष्ण रहा, ये कृष्ण रहा। तो तुमके ढूंढने के बहाने से वो मुझे और प्राप्त कर लेंगे, इसलिए अच्छी बात है तुम हमारे पास ही रहो। तो ये बात सुनी ना तो भाई अब गोपियां बहुत प्रसन्न हो गई, बहुत प्रसन्न हो गई। जब उनको भगवान ने अपने द्वारा कहे हुए शब्दों का नया अर्थ उपस्थित किया, ताभी समेता भिरुदार चेष्टित प्रिय क्षणोत्फुल्ल मुखी भिरच्युत उदार हास द्विज कुंद दीदितिर व्यरोच तैणांक इवो निभिर्मृत। अनेक नक्षत्रों के बीच में जैसे उडुपति माने हमारे चंद्रमा सुशोभित होते हैं, ऐसे सब गोपियों के बीच में भगवान बड़ी विलक्षण उदार लीला करते हुए बड़े अच्छे लग रहे थे। देखो चंद्रमा लीला करता है, घटता चंद्रमा है बढ़ता चंद्रमा है, इसके अलावा आकाश का एक भी तारा आपको घटता बढ़ता नहीं दिखता। ऐसे गोपियां तो है तारे के समान और भगवान है लीला करने वाले समान। वे भगवान आत्मा रामो प्यरी रमत, अपने स्वरूप में रमण करने वाले थे, अपने स्वरूप में रमण करने वाले हैं, फिर भी गोपियों के साथ रमण किया। ये क्या है, ये ज्ञान से भक्ति में उतरना है। ज्ञान का रस होता है वो शांत रस होता है, एक रस होता है, और भक्ति का रस अनंत रस होता है, अनंत प्रतिक्षण वर्धमान रस होता है। इसलिए आप देखो भक्ति के लिए कि दिवम दिवम नवे दिने दिने नवम नवम, आज की छवि शाम तुहारी न्यारी दिखे, आज की छवि न्यारी दिखे। आप रोज श्रद्धा से मंदिर में दर्शन करने जाओ, नियम बना करके देखो कि हमको कई देर तक भगवान के शिव ग्रह का दर्शन करना है। आप दर्शन करते रहो, दर्शन करते रहो, आपको हर दिन भगवान के छवि में नयापन दिखेगा। भगवान के मुखमंडल पर, भगवान के नेत्र कमल पर आप दृष्टि डाल के देखो, कुछ न कुछ नयापन आपको दिखेगा। दिने दिने नवम नवम, नमामि श्याम सुंदरम, हर दिन ये नया मालूम देता है। तो भगवान बड़ी विचित्र लीला करने लगे, उनके साथ वे गाने लगे, माला तो पहने हुए थे, अब वो भगवान अपना हाथ ऊंचा करके कभी गाते हैं और कभी गोपियां गाती हैं, तो वो तो गोपियां कृष्ण के विषय में गाती हैं और भगवान उनके विषय में गाते हैं। ऐसे भगवान गाते हैं तो सुवन को बड़ा सुशोभित किए। गाते गाते वे यमुना जी के तट के ऊपर आ गए और वहां बड़ी सुगंध और बड़ी ठंडी हवा। अब भगवान वहां नाचने लगे, गाने लगे, हाथ ऊंचा किए, बाहु प्रसार परिरंभ करो लनु। तो ऐसे करते हुए भगवान क्षेल्यावलोक हसिते, बड़े मजाक करते हुए भगवान हंसते हैं। ऐसे करने से उनका अनुराग, गोपियों का अनुराग बढ़ता ही गया। बढ़ते रहने से अब क्या, भगवान का स्वभाव एक कि जो उनकी भक्ति करता है या उनमें अनुराग बढ़ाता है भगवान उसको सम्मानित करते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। सबई मान प्रद आप अमानी, ज्यों ज्यों भक्त का अनुराग बढ़ता है त्यों त्यों भगवान उसका ज्यादा सम्मान करते हैं। उस ज्यादा सम्मान में गोपियों को अभिमान हो गया कि संसार में सब स्त्रियों से बढ़कर हम हैं, तभी तो कृष्ण हमसे इतना प्रेम करते हैं। उनके अंदर अभिमान आ गया तो ये जो सौभाग्यमद है माने कृष्ण हमारे हैं, इनके ऊपर हमारापन ज्यादा चलने वाला है, ऐसा एक स्त्री के मन में पति के प्रति एक मद आता है, मद सौभाग्यमद। तो वो मद गोपियों के मन में आया कि कृष्ण हमारे हैं, हम जैसा कहें वैसा कृष्ण कर सकते हैं, ऐसा एक छिपा हुआ उनमें अहंकार पैदा हुआ। देखो जहां जरा सा भी अहंकार होता है वो भगवान को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। कि तुम और हम कोई दो हो तो अहंकार भी करे, अरे गोपियां तुम और हम तो एक है ना, इस अहंकार को बीच में क्यों ले आई। तो उस अहंकार को दूर करने के लिए भगवान ने क्या किया कि वो खुद ही दूर हो गए। लो तुम अहंकार कर लो, अहंकार से कर लो पार पटक लो, मैं तुमसे छिप जाता हूं। उस अहंकार के नाश के लिए और गोपियों में प्रेम जगाने के लिए भगवान छिप गए, अंतरित हो गए। अंतरित होने के बाद अब गोपियां भगवान को ढूंढने लगी, अब भगवान को ढूंढने लगी, अरे कृष्ण कहां गए, कृष्ण कहां गए। जब कृष्ण पास में थे तब तो अहंकार हुआ, और कृष्ण गए तब विरह पैदा हुआ। विरह, ये विरह के अंदर अहंकार गलता रहता है। गायन्ते उच्चैः रमुमेव संगता विचक्षुरुन्मत्तकवद् वनाद्वनम्। वे उच्च स्वरों में गाते रही, एक उन्मादी के समान बकती रही, और प्रप्रच्छुर आकाश वदन तरम बहिर्भूतेषु संतम पुरुषम वनस्पतिम। वृक्षों से पूछते हैं, सबसे पूछते हैं, अरे बताओ रे बताओ, वो कृष्ण हमारा कहाँ गया तुम बताओ। तो सबके अंदर आकाश के समान, सबके अंदर बाहर सब जगह विराजमान है वो, हमारा कृष्ण कहाँ गया बताओ बताओ, ऐसे पूछ रहे हैं। अरे अश्वत्थ तुम बताओ, अश्वत्थ, अश्वत्थ माने पीपल, वृक्षों में पीपल सबसे बड़ा होता है, उसका नाम अश्वत्थ है। वो जो स्वयं पर्यंत नहीं टिकता उसका नाम अश्वत्थ है। अच्छा अस्तु, तुलसी से पूछा, न्यग्रोध बट से पूछा, न्यग्रोध माने बट वृक्ष, बट वृक्ष देखो जो ही फलता फूलता है ना तो नीचे ज्यादा आता है, न्यग्रोध, न्यक माने नीचे की तरफ उसका प्रवाह रहता है। ऐसे करके वे एक एक से आम से पूछा है, पनस से पूछा है, ये ने परार्थ भव का, ये जितने वृक्ष हैं दूसरों के लिए जीते हैं, इसलिए कहा कि आप तो दूसरों के लिए जीने वाले हो, आप तो बताओ भाई। अरे पृथ्वी तुम बताओ, कैसी हर्षित हो रही हो, कितनी अच्छी लगती हो तुम, वो हमारा कन्हैया कहां गया इतना बता दो। तभी तो देखो वनस्पति के माध्यम से और दूब आदि के माध्यम से तुम खिलती हुई मालूम देती हो। ऐसे वे उन्माद की तरह से, कोई तो पूतना बनती है और कोई बंसुरी बजाती है, कोई कहती है कि मैंने गोवर्धन पर्वत धारण कर लिया है तुम आ जाओ हमारे नीचे आ जाओ, ऐसे कृष्ण का अभिनय करती है, कोई पूतना बनती, कोई क्या बनती। ऐसे करते करते वृंदावन में इधर उधर खूब घूमे और चलते 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 एक जगह उनको भगवान के चरण दिखाई दिए। ऐ सखी आओ 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 सखी, ये देखो ये चिन्ह, चरण चिन्ह देखो, ये ध्वजा का चिन्ह, ये कमल का चिन्ह, भगवान के चरणों में था, ये देखो ये देखो ये कृष्ण के चरण है। पर सखी इन चरणों के साथ एक का चरण और दिखाई दे रहा है, ये कौन सखी हो सकती है, देखो ये डाह नहीं है, ये डाह नहीं है, अनुराग है, माने हम इतनी सखियों को छोड़ करके हमारे में से एक सखी को वो कृष्ण लेकर के गया है, वो सखी बहुत भाग्यशाली है। अनया आराधितो नूनम, इसने जरूर भगवान विष्णु की आराधना की है, तभी तो वो कृष्ण गोविंद इनको ले गया है। ये अनया आराधितो नूनम कहते हैं, व्यास जी ने सारी भागवत में राधा जी का नाम नहीं लिया, क्योंकि राधा जी का नाम लेते तो उनके समाधि लग जाती, परंतु यहां एक शब्द आया प्रकारांतर से कि अनया आराधितो नूनम। इसलिए कई कथावाचक तो ये मानते हैं कि ये राधा जी थी, ये राधा जी थी जिनको लेकर के गए भगवान। अब जरा उनका भी वर्णन सुन लीजिए। जब वो राधा जी के उसके उधर गए तो जाकर के उनसे देखा, पूछा कि राधा जी आप यहां अकेली रो कैसे रही हो? तो राधा जी ने, अच्छा उससे पहले और भी कई बात देखी, वे गोपियां बोलती, ये देखो यहां देखो, यहां इस सखी को साथ में लाए हैं और इस सखी को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण ने फूल तोड़े वृक्ष से, देखो ये आधे पंजे, ये उचकने से आधे होते हैं, ये देखो कृष्ण यहां इसको कंधे पर बैठाया, तब मिट्टी के अंदर पैर गड़े हुए, हल्के पैर नहीं, भारी भारी पैर अंदर गए। ऐसे करते करते आगे उस स्त्री को ही देख लिया, राधा जी को ही देख लिया, राधा जी बैठी है, रो रही है, आंखों से आंसू आ रहे हैं। सखियों ने सबने पूछा गोपियों ने कि राधा जी क्या बात हुई, आप रो रही हो, आपको तो लेकर के आया था। हाँ हमको वो लेकर के तो आया था गोपियों, परंतु मेरे मन में ये बात आ गई कि सब गोपियों से बढ़कर तो मैं हूं, सारे संसार में भगवान से प्रेम करने वाली गोपियां और गोपियों में सबसे बढ़कर मैं हूं, तभी तो मुझे लेकर आए। तो मैंने थोड़ा मुंह बना करके कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ चल नहीं सकती हूं, न पारेम चलितुम नैमाम यत्र ते मन है, तुम ले जाओ तो चली जा सकती, मैं अपने मन से अब नहीं चल सकती, चल नहीं सकती, शरीर से चल नहीं सकती, थक गई। तो उन्होंने कहा थक गई, लो आओ मेरे कंधे पर बैठो। ऐसे करके वो कंधा नीचे किया और मैं बैठने लगी, तो मैं गायब हो गया हूं, हमको भी छोड़ दिया। तो कहा आओ सखी, छोड़ दिया तो मिलने का एक ही उपाय है, क्या? अपने सब मिलकर के कृष्ण को पुकारो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। यमुना नदी के तट पर आ गई और कृष्ण के लिए बुलाने के लिए कहने लगी। अब देखो ये कनक मंजरी छंद में 31वें अध्याय के श्लोक है। कनक मंजरी छंद होता है कि कनक मंजरी नश्चरऊ लगऊ, एक नगण होता है, दो रगण होते हैं, फिर एक लघु होता है, एक गुरु होता है, ऐसे चलता है ये कनक मंजरी। माने कनक माने धतूरा, धतूरा खाया हुआ आदमी है ना, ऐसे बोलता है, ऐसे ये श्लोक ऐसे ही बोलने वाले हैं, इसी राग में हो। जयति ते दिकम जन्म नाम ब्रज श्रयते इंदिरा शाश्वदत्र ही दैत दृश्यताम दिक्षु तावकास त्वयि धृता सवस त्वाम विचिन्वते। कभी ऊंचा बोलना, कभी नीचा बोलना, ऐसे ऐसे सुखदेव गोपियां बोलती हैं, देखो यार गोपिय हो चुका है, सुखदेव जी महाराज का नाम नहीं लिया, सुखदेव हुआ, ऐसा नहीं कहा, श्री सुख हुआ था नहीं, गोप्य हो चुका सुखदेव जी महाराज। उन गोपियों के कृष्ण के बीच में अपने आप को डालना ही नहीं चाहते थे। गोपियां कह रही है, अरे कृष्ण तुम्हारे अवतार लेने से हमारे इस ब्रज की कैसी शोभा बढ़ गई, पर तुम हमको दर्शन ही नहीं देते हो। ब्रज की तो शोभा हो गई पर हमारी तो शोभा नष्ट हो गई ना। अरे तुमने हमको मार दिया। कैसे मार दिया जी? हमने कौन से शस्त्र से मार दिया कि प्रेम की चितवन से मार दिया। एक बार तुमने हमको देखा प्रेम से, बस हम तो उस प्रेम के अंदर घायल हो गए थे। जिलाया तो बहुत है तुमने हमको, पर मारा भी बहुत है। जिलाया कहां से? विष जला प्याद व्याल राक्षसाद वर्ष मारुताद वैद्युता नलात वृषमयात्मजात विश्वतो भयात ऋषभते वयम रक्षिता मुहु। सबसे रक्षा की तुमने, यमुना नदी का जहरीला जल था उससे रक्षा की। अब देखो ये व्याल राक्षस है ना, व्याल ठीक। तो तुमने हमारी देखो अघासुर से रक्षा की। एक नाम देखो यहां पर दे दिया अलग से, जिसकी लीला अभी आई नहीं है, आगे आएगी। क्या? वृषमया आत्मजात। ये बैल वाली कथा तो अभी आई नहीं, वो तो आगे आएगी। जो अरिष्टासुर था बैल बन करके गया था, ये बैल मारने की बात ही नहीं आई। क्या ना आगे पीछे के प्रसंग बोलते हैं हमारे सुखदेव जी महाराज। और कहते हैं कि आप केवल देवकी के बेटा नहीं हो, सब प्राणियों की आप अंतरात्मा हो, सबको देखने वाले हो। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से संसार की रक्षा के लिए आप आए हो, और खास करके आप ब्रजवासियों के कष्ट को दूर करने वाले हो। और हम ब्रजवासियों को आप तकलीफ देते हो, ये कोई न्याय है? और आपका एक स्वभाव है क्या? देखो गोपियां समझ गई कि हमने गलती की थी। निज जन स्मय ध्वंसन स्मित। आपके भक्त का जब कोई अभिमान नष्ट होता है तब आप मुस्कुराते रहते हो। आपकी मुस्कुराहट कब खिलती है? जब किसी भक्त का ये अभिमान नष्ट होता है। भक्त तो मुरझा जाता है अभिमान से, पर वो अभिमान के बाद नष्ट होता है तब आप मुस्कुरा जाते हो। तो देखो एक तो देखो आप हमारे पर कृपा करो। काली नाग के सिर पर आपने पैर रख दिया, आप हमारे सिर के ऊपर भी पैर रख दो ना। हम क्या काली नाग जैसे भी नहीं है? उससे भी गए बीती है क्या? मधुर वाणी से और प्रेम से खिले हुए नेत्र से कम आप हमको देख तो लो। और आपने आप अपने अधरामृत से हमको आप्लावित कर दो एकदम। आहा, आप खुद मिल जाए तो कहना ही क्या है। आपकी कथा से क्या होता है कि तव कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। आपका जो कथा का अमृत है, संसार के ताप से जले हुए प्राणियों को शांति देने वाला है। बड़े बड़े कवियों ने गाया, कवियों ने, क्रांत दृष्टाओं ने, जिनकी बुद्धि बहुत काम करती है, उन लोगों ने आपकी कथा को गाया है। तो एक कपटी तू आकर के बैठ करके कम से कम हमसे मीठी मीठी एकांत में बात तो कर। तेरा ध्यान करते हैं तो बड़ा हमको आनंद मिलता है। तेरे चरण कमल इस समय जंगल में भटकने से, कंकर से और कांटों से बिंद गए होंगे। जल्दी आओ, जल्दी आओ, और तुम्हारे कोमल चरणों को हमारे शरीर पर रखो ताकि कांटे का दर्द दूर हो जाए, कंकर का दर्द दूर हो जाए। और एक बार तुम बंसुरी बजाओ। क्यों? इसलिए बजाओ कि इतर राग विस्मारणम निर्णाम देखो दो प्रकार दो जो दो संगीत चलती हो ना तो वो संगीत चल नहीं पाती है। तो आप जब अपनी ये बंसुरी बजाते हो तो हमारे संसार का राग खत्म हो, एक राग से दूसरे राग खत्म होती है। इतर राग विस्मारणम, संसार का जो राग हो गया राग हो गया, तो क्या करो इस राग को राग से ही काटो। जैसे कांटे को कांटे से ही निकालते हैं, पैर में कांटा लग जाए तो लोहे की चांदी की एक कांटा काटनी होती है, उसे कांटा काटने से कांटा काट देते हैं, उसका नाम ही कांटा काटनी। ग्रामीण लोगों के पास ज्यादा रहती है। तो हमारा संसार में राग हो गया, उस राग को दूर करने के लिए आपकी बंसुरी से जो राग निकलता है उस राग से हम ये राग भूल भाल जाते हैं। इसलिए अपनी बंसुरी बजाओ। तुम्हारे बिना हमारे लिए एक चुटकी का समय है ना बहुत लंबा समय हो जाता है। हम तो सबको भूल भाल करके तुम्हारे पास आए और तुम हमको ही छोड़ करके चले गए। इसलिए जल्दी आओ कृष्ण, जल्दी आओ, जल्दी आओ, क्योंकि भवदायु सामने है। हमारी आयु आप ही हो और हमारी आयु आपके लिए है। आप हो तो हमारी जिंदगी है, आप हमसे नहीं मिलो तो हमारे जीने का अर्थ क्या हुआ। जीने का अर्थ तो आपके और हमारे मिलने में ही है। ऐसी गोप्या इति प्रगायंत्य है। देखो गाना तो सभी गाते हैं पर प्रगायंत्य कहा है और प्रलपंत्य है, लपलपाट सब करते हैं पर ये प्रलपंत्य है, ये प्रलपंत्य है, ये प्रलाप है। प्रलाप माने प्रलाप माने बहुत उत्कृष्ट आलाप। और फिर वे गोपियां रोई तो रुरुदु सुस्वरम, रोने में उन्होंने स्वर लगाया हो, रोने में भी उन्होंने स्वर लगाया। रोने में कोई स्वर लगता है क्या? देखो ये सारे गम वाले पेटी बाजा बजाएंगे तो रोने में कोई स्वर लगाएंगे? रोने में स्वर नहीं लगता पर इनके स्वर लगा है। तो स्वर क्या था? अंतर्मन से विरह था, ये अंतर्मन से विरह है। उस विरह के अंदर वो रोने लगी तो भाई उस समय में उनके सब अभिमान वगैरह सब जल जला गया और भगवान उसी समय उन्हीं गोपियों के झुंड में से अकस्मात प्रकट हो गए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। कितनी गोपियों में तड़फन थी और कैसे भगवान प्रकट हुए हो, स्मयमान मुखम बजे, मुस्कुराते हुए मुख कमल को लेकर। ये क्यों मुस्कुराए? सबका अभिमान नष्ट हो गया इसलिए। अब भगवान को उन गोपियों ने पकड़ लिया, किसी ने कंधा, किसी ने पैर, किसी ने हाथ, किसी ने कैसे ऐसे। कई गोपियों ने देखा कि इसका कुछ पता नहीं है, कब का कहां भग जाए। वसुदेव जी के यहां से भग गया तो नंद जी के यहां आ गया, नंद जी के यहां से भगा तो जंगल में आ गया, जंगल में हम लोगों के पास आया और भग गया तो पता ही नहीं कहां चला गया, और जहां भी गया था वहां से भग गया और वापिस हमारे बीच में आ गया। फिर भी ये कहीं भग सकता है पता नहीं है, इसलिए इसका ध्यान कर लो जैसा ध्यान कर सकते हैं। अपरा अनिमिषद दृग्भ्याम जुषाणा तन्मुखाम्बुजं आपीतमपि नातृप्य संतस्त चरणं यथा। देखते रही वो गोपियां, देखते रहे, तृप्ति नहीं हुई। जैसे संत महापुरुष भगवान के चरणों की तरफ देखते हैं तो देखते ही रहते हैं, तृप्त नहीं होते। एक संत थे गंगा जी किनारे, भगवान का चित्र लेके बैठ जाते हैं, देखते रहते, मुस्कुराते रहते, रोते रहते, आह तो कितना अच्छा है, तो बहुत अच्छा है। कौन कहता है कि मुझे कृष्ण नहीं मिला? तू मिल गया ना, तू कृष्ण ही है, सर्वव्यापक है तो चित्र में है ही, तू मुझे मिल गया, बहुत अच्छा है। अरे तू कितना अच्छा है, न मेरे से पानी मांगता है, न मेरे से भोजन मांगता है, न मेरे से माखन मांगता है, मैं तो यशोदा से भी बढ़कर हूं, बड़ा सुखी हूं। तू मिल गया और मुझसे कुछ नहीं चाहता है, बता कैसी विचित्र बात है, कैसी विचित्र बात है। ऐसे वो ध्यान कर रहे थे, विजहुर विरहजम तापम प्राज्ञम प्राप्य यथा जनाः। और भाई भगवान को देख करके उनके मन में बड़ा आनंद हुआ, जैसे सत्पुरुष महापुरुष को प्राप्त करके दुनिया सुखी हो जाती हो। अब गोपियों ने भगवान को चारों तरफ से घेर करके कहा, आओ आओ यहां बैठो। अच्छी मिट्टी की बालू का उसके ऊपर गोपियों ने अपना ओढ़ना बिछा दिया और भगवान उनके ओढ़ने पर बैठ गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अरे सुनो सुनो, जो भगवान अनादि काल से योगियों के हृदय कमल में बैठने में संकोच करते हैं, वे भगवान जाकर के वहां बैठ गए, गोपियों के ओढ़ने पर जाकर बैठ गए। ओढ़ने पर कर्माबाई थी, उसने धाबड़िया धाबड़िये का पर्दा लगाया। धाबड़िये का धाबड़िया होता है ऊन का, और वो धोया ही नहीं जाता है, खूब खराब मैला रहता है, मैला कुचेला। वो धाबड़िया लगाया धाबड़िया, क्या भाई खीचड़ो खावे तो कोई देख नहीं ले, इन धाबड़ियों पर पर्दो लगाए। और वास्तव में भगवान को आना पड़ा और उसका खीचड़ा खाना पड़ा। वो खिचड़ा भी बनाया था, कहते हैं आधा सीधा हुआ था वो, उसको जल्दी लगी कि मेरे बाप ने कहा कि तू भोग लगा देना ठाकुर जी के, तो देरी हो गई, मैं तो भूल गई। अब वो खिचड़ा सीधा आधा सीधा ले जाकर रख दिया, घी रख दिया। क्या बता भगवान कब आए और खिचड़ा और घी खा गए, उसको कटोरी खा ली। अरे ऐसे भगवान। तत्रोपविष्टो भगवान स ईश्वरो योगेश्वरांतर हृदिकल्पितासन। वो भगवान जाकर के बैठ गए उनके ओढ़नी पर जाकर बैठ गए। अब गोपियां पूछने लगी, अरे कृष्ण एक बात बताओ, संसार में ऐसे आदमी जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, और कई ऐसे आदमी जो प्रेम करने वालों से प्रेम नहीं करते हैं, और कई ऐसे हैं जो दोनों से ही प्रेम नहीं करते हैं। अब बताओ तुमको कौन से अच्छे आदमी लगते हैं? भगवान कहते हैं देखो, प्रेम से प्रेम करने वाले वो स्वार्थी होते हैं, संसार में वो उससे प्रेम करता है और वो उससे प्रेम करता है, स्वार्थ सिद्धता है और कुछ नहीं है। जब दोनों का स्वार्थ टकराता है आपस में, थू भायला हो जाता है, थू भायला। और प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करते हैं, वो होते हैं माता पिता, संत महात्मा, गुरुजन। वो प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करते हैं। छोटा सा बच्चा है, वो माँ से प्रेम करता है क्या? पिता से प्रेम करता है क्या? न माँ से प्रेम करता है, न पिता से प्रेम करता है। माँ बाप बहुत प्रेम करते हैं, क्यों? दयालुता है। ऐसे ही संत महापुरुष है, हम उनसे प्रेम करते हैं क्या? पर वो प्रेम करते हैं, तो ये प्रेम बहुत ऊंचा होता है। और दोनों से ही प्रेम नहीं करते ऐसे पुरुष तो भाई या तो परम ज्ञानी होते हैं, आत्माराम होते हैं, वो दोनों से ही प्रेम नहीं करते, या आप्त काम होते हैं, वो भगवान के सगुण साकार के दर्शन कर लिए, किसी से लेना देना नहीं, वो आप्त काम हो गए, वो भी किसी से प्रेम नहीं करते। और तीसरे वो हैं जिनको पता नहीं कोई हमसे प्रेम करते हैं कि नहीं करते, कोई पता नहीं। और चौथे होते हैं वो कृतज्ञ पुरुष होते हैं, कृतज्ञ, वो भूल जाते हैं कि अरे हमारे साथ इतना प्रेम था, इतना स्नेह था, वो भूल जाते हैं। वो होते हैं गुरुद्रोही। गुरुद्रोह है नाम दिया है इसने। देखो सखियों, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अच्छी तरह से जानता हूं और भाव भी जानता हूं। तुम ये बताना चाहती हो ना कि तुम इनमें से कौन हो? कि मैं इनमें से कोई भी नहीं हूं, और मैं प्रेम करने वालों से बहुत प्रेम करता हूं, परंतु कभी कभी प्रेम करने के लिए अदृश्य होता हूं ना, उस समय में मैं विशेष प्रेम करता हूं। देखो तुम लोगों ने घर गृहस्थ की सांकल को तोड़कर जो मेरे से प्रेम किया है, इस प्रेम का मैं कभी बदला उतार नहीं सकता हूं। न पार ये हम निर्वध्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषा पीव है, तुम्हारे उपकार का बदला किसी प्रकार से मैं उतार नहीं सकता हूं। निर्वध्य संयुजाम, निष्काम जो तुमने मेरे साथ प्रेम किया, निष्काम प्रेम, मैं कैसे उसका बदला उतारूं। तुमको देवताओं की आयु भी दे दूं तो थोड़ी है, मैं तुमको कुछ दे नहीं सकता हूं। यही मेरे ऋण उतारने का एक तरीका है और कोई तरीका नहीं है। जैसे कोई सेठ के पास में जाए कि सेठा आपका ऋण मैं उतार नहीं सकता हूं, आप माफ कर दो तो कर दो, तो दयालु सेठ होता है कि अच्छी बात है भाई, हम जानते हैं तेरे पास कुछ नहीं है, न तेरे पास खेत है, न कुछ नहीं, जा तेरा ऋण माफ है। ऐसे भाई मैं तुम्हारा ऋण उतार नहीं सकता गोपियों, तुम इस ऋण के बदले में मुझे आप ऋण मुक्त कर दो। गोपियां कुछ नहीं बोली, गोपियां भगवान की इन बातों को सुने तो अपना विरह जन्य संताप था वो संताप छोड़ दिया, अब उनको संताप नहीं हुआ। देखो भगवान के चारों तरफ गोपियां थी और बीच में भगवान थे। भगवान ने एक एक गोपी को देखा कि सब गोपी परम आनंद में डूबी हुई है और इन गोपियों का मैं बदला उतार नहीं सकता हूं। तो भगवान जब गोलाकार गोपियां खड़ी थी, स्वयं बीच में थे, अकस्मात भगवान हर दो गोपी के बीच में जाकर खड़े हो गए। बोलिए आनंद कंद भगवान की, युग युग गोलाकार युग, भगवान हर दो गोपी के बीच में है और भगवान के इस हाथ में भी गोपी का हाथ और इस हाथ में भी गोपी का हाथ, ऐसे रहे भगवान। ऐसे चलते चलते भाई वहां वो चलते रहे, घूमते रहे घूमते रहे, आकाश में देवता लोग अपने अपने विमानों में बैठ करके आए, कहने लगे आओ आओ इस भूमंडल पर, इस ब्रज में एक कृष्ण बहुत बड़ी रास लीला कर रहे हैं, प्रेम लीला कर रहे हैं, आओ देखो तो सही। तो आकाश विमानों से भर गया है और देवता लोग अपने देव लोक से पुष्प लेकर आए और सब गोपियों पर और भगवान पर ऊपर से फूलों की वर्षा करने लगे और दुंदुभियां बजाने लगे। भगवान का ये दिव्य रास देखकर बहुत आनंद का अनुभव हुआ। अब वे पैर उछाल उछाल करके नाच रही है गोपियां, उनके पैर उछलने से एक साथ छनक छनक करके आवाज आती है, पैर को रखने से आवाज आती है, हाथ को ऊंचा करने से, फिर तिरछा करने से, ऐसे नाचते नाचते एक बिल्कुल लयबद्ध होकर के वे नाचने लगी। वलयानाम नूपुराणाम किंकली नाम से योषिताम, उस रास मंडल में उनके हाथ की कलयों के आभूषण, चरणों के आभूषण, उन सबसे एक विलक्षण ध्वनि आ रही थी और नाचते नाचते पैरों से और कमर से और कभी कभी गर्दन से ऐसी लचक होती थी, उस लचक से उस नृत्य का एक अलौकिक आनंद बना और उस आनंद में भगवान भी नाच रहे हैं, गोपियां भी नाच रही हैं। और उस समय भगवान जब स्वर लेते हैं तो गोपियां उनके साथ में स्वर लेते हैं और गोपियों के स्वर में भगवान अपना स्वर मिलाते हैं, एक दूसरे का स्वर मिलता है तब ओ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ऐसे ऐसे सब बोलते हैं और एक दूसरे का मान रखते हैं। जब ये ध्रुव स्वर ध्रुपद पर गाने लगते हैं, ऊंचे स्वर में गाने लगते हैं, तो उस समय में देखो गोपियां का स्वर तो ऊंचा रहेगा, उसी स्वर में उसी ध्रुपद में भगवान अपना स्वर मिलाते हैं। तो स्वर मिलाते समय में तस्य मानन च बहु अदात, भगवान ने उनको बहुत मान दिया, वाह वाह कितना बढ़िया स्वर है। ऐसे करते करते कई रासलीला में थक जाती है, थकने पर भगवान को छोड़ती नहीं, भगवान का कंधा पकड़ लेती है, कोई भगवान का हाथ पकड़ लेती है। भगवान भी अनेक रूपों में, जितनी गोपियां थी उतने ही भगवान थे। ऐसे करते करते जब कोई गोपी देखती कि भगवान अब खड़े हैं, तो तत्काल गोपी एक तांबूल माने एक पान लाती और भगवान के मुख में रख देती। देखो तत्सुखे सुखित्वम की बात है, तत्सुखे सुखित्वम, उसके सुख में सुखी होना। कृष्ण को पान देओ, क्योंकि कृष्ण है नाचते नाचते कहीं थक गया होगा, कृष्ण को पान देओ। बताओ उन गोपियों में जब ऐसा अनुराग था, भगवान ने देखा कि भाई इस पृथ्वी को तो मैंने प्रेम से पवित्र कर दिया, रास से पवित्र कर दिया, आकाश से देवता लोग देख लिए, अब चलो यमुना नदी में और स्नान करेंगे और फिर यमुना नदी में रास लीला करें। तो गोपियां तो एक तरफ खड़ी हो गई और कृष्ण भगवान एक तरफ हो गए, और जितनी गोपियां उतने ही कृष्ण। अब वो पानी के अंदर गोपियां तो पानी कृष्ण की ओर फेंकती है। ये पानी फेंकना क्या है, ये कोई कल्लोल नहीं है, ये हंसीबाजी नहीं है, दिल्लगी नहीं है, ये मटरगस्ती नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है कि हमारे पास जो प्रेम है हम आपको देते हैं। भगवान ने कहा कि भाई आपका प्रेम है वो हम लेते हैं, लेकिन हमारा प्रेम हम आपको देते हैं। ये जल को इधर उधर देने का अर्थ है अपना प्रेम है वो हम आपको देते हैं। ऐसे जब इस प्रकार से रास लीला यहाँ भी होने लगी, तो फिर देवताओं ने यहाँ दुंदुभी बजा करके फूलों की वर्षा की, ऐसे करके जल तत्व में भी रास लीला की। और ऐसे करते करते अब भाई जब देखा कि अब चंद्रमा अस्ताचल की ओर जा रहा है, तो ये रास लीला वहां पर समाप्त तो होने लगी। भगवान कैसे हैं वो, इसमें एक शब्द याद रखना, रास लीला के अंदर जान भरने वाला शब्द है वो, आत्मनि अवरुद्ध सौरत है। आत्मनि अवरुद्ध सौरत है, अपने अंदर अपने प्रेम को पचा लेना, ये केवल भगवान के हाथ की बात है और किसी के हाथ की बात नहीं है। बड़े 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 योग वेत्ता हो गए, योगी हो गए, बहुत बड़े भारी योगी हो गए, पर वो आत्मनि अवरुद्ध सौरत नहीं हुए। ये अवरुद्ध सौरत की क्षमता केवल भगवान में है, इसलिए ये रास लीला भी केवल भगवान के ही करने की होती है। राजा ने कहा कि महाराज भगवान तो मर्यादा की स्थापना के लिए आते हैं, उन्होंने दूसरे इनकी कलैयों को क्यों पकड़ा, गोपियों की कलैये हाथ क्यों पकड़ा, गोपियों के साथ ऐसा खेल क्यों किया, क्योंकि गोपियां तो दूसरों की स्त्रियां थी ना, ऐसा क्यों किया भगवान ने। सुखदेव जी महाराज कहते हैं देखो राजन, बड़े पुरुषों के द्वारा कभी कभी छोटे पुरुषों के मर्यादा के लिए बनाई गई रेखाएं बड़े पुरुषों के द्वारा यदि तोड़ी जाती होती हैं, तो उनसे उन मर्यादाओं का अतिक्रमण नहीं माना जाता, वो मर्यादा विरुद्ध बात नहीं मानी जाती, क्योंकि उनका बड़प्पन ही ऐसा है कि वो मर्यादाओं को ढक करके चलता है। बड़े पुरुष जैसा कहते हैं वो काम करो, बड़े पुरुष जैसी मर्यादा बनाते हैं वो काम करो, लेकिन बड़े पुरुष यदि कभी अपनी मर्यादा के बाहर जाते हुए दिखते हैं, तो वो तुम्हारी मर्यादा के बाहर है, तुमको तो अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, वो तुम्हारी मर्यादा में बंधने के लिए विवश नहीं है। तभी तो देखो शंकर जी ने जहर पी लिया, क्या तुम पी सकते हो, तुम जहर नहीं पी सकते। ईश्वराणाम वच सत्यम क्वचित आचरितम तथैव आचरितम क्वचित, आचरण का तो कहीं कहीं अर्थ जो है अनुकरण होता है, सर्वत्र नहीं होता। इसलिए कृष्ण भगवान का जो ये आचरण हुआ, ये आचरण दिव्य प्रेम के कारण से हुआ है, दिव्य प्रेम ने किया है। जैसे नदी के किनारे मर्यादा बनी हुई है कि भाई यहां स्नान करो, ये घाट बना हुआ है, पर कभी कभी भयंकर बरसात आ जाए, वो घाट डूब जाए, तो क्या वो नदी के लिए मर्यादा है, नदी के लिए मर्यादा नहीं है। क्या उस पानी के लिए मर्यादा है जो बरसा है, जो नदी में आया, उसके लिए नहीं है। ये तो हम लोग जब नदी में स्नान करने जाएं तो हमारे लिए मर्यादा है कि इन पेड़ियों से आप नीचे उतरो और आप स्नान करिए और इन पेड़ियों से वापस आकर के अपने घर चले जाओ, लेकिन न तो नदी के लिए मर्यादा है कि देखो तुम इससे ज्यादा बढ़ ही नहीं सकती, आएगा पानी नदी क्या करे, ऊपर आप वर्षा को रोक नहीं सकते। हमारी यहाँ पर ये मर्यादा बनाई हुई, सीढ़ियां बनाई हुई, इससे ज्यादा क्यों बरस गए, चलती है वहां पर तुम्हारी बात कि नहीं चलती। तो भाई ऐसे ही भगवान पर ईश्वरीय मर्यादाएं मानवीय मर्यादाओं से दिव्य होती है। मानवीय मर्यादा में बैठे हुए तुम ईश्वर की लीलाओं पर प्रश्न नहीं कर सकते। साफ हो गया उत्तर कि ईश्वर की अपनी बात है, हम लोगों की मर्यादा अपनी बात है। देखो देखो परीक्षित, तुमने कहा कि दूसरों की स्त्री का स्पर्श क्यों किया, क्या भगवान के लिए कोई दूसरा होता है? हाँ महाराज, भगवान के लिए कोई दूसरा नहीं होता। ये गोपियां कोई भगवान से अलग थी? नहीं महाराज, अलग नहीं थी। क्या आदमी अपने कांच में प्रतिबिंब देखता है तो वो कांच वाला प्रतिबिंब और वो आदमी ये दो हो जाते हैं क्या? नहीं होते। ऐसी गोपियां और भगवान, इनमें कभी द्वित्व या बहुत्व है? वही भगवान है और वही गोपियां हैं। गोपियां और भगवान दो है ही नहीं, तो दूसरों की स्त्री के स्पर्श का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। तीसरी बात यह है कि यत्पाद पंकज पराग निषेव तृप्ता, भगवान के चरणों के पराग के सेवन करने से महान संतुष्टि को प्राप्त होने वाली संत महापुरुष संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। स्वयरम चरन्ति, वे ऋषि मुनि बिल्कुल स्वतंत्र होकर के विचरण करते हैं। ये स्वतंत्रता तो ऋषि मुनियों में भी आ जाती है। क्या भगवान इतने भी स्वतंत्र नहीं है कि अपना अलौकिक दिव्य प्रेम, अपने आप से ही किया हुआ प्रेम इस जगत के अंदर उदाहरण के रूप से न रख सकें, कि ऐसा भी प्रेम कोई होता है? ये बता नहीं सकते? बता सकते हैं। इसलिए देखो परीक्षित, जब उन गोपियों के पतियों ने दोष नहीं देखा तो फिर दूसरे लोगों को दोष देखने का क्या अधिकार है? नासुयन खलु कृष्णाये मोहितास्तस्य मायया, भगवान की माया तो देखो तुम, जो पति मना कर रहे थे उनके पास में उनकी पत्नियां बैठी हुई हैं, और भगवान के लीला में जो पत्नियां हैं वो वास्तव में भगवान की पात्र भूता दिव्य है। वो गोपियां कैसे तुम इनको आपस में मिला के रखोगे? मन्यमाना स्वपार्श्व स्थान स्वान स्वान दारान ब्रजऊ कसे, किसी भी ब्रजवासी से पूछो तुम्हारी पत्नी रासलीला में गई थी कि नहीं? भाई वो तो हमारे घर में ही थी। तो स्वान स्वान दारान, सबने अपनी अपनी पत्नियों को अपने पास में देखा, तो फिर वो रासलीला में कौन थी? परीक्षित, वो केवल भगवान के संकल्प से एक नई सृष्टि से पैदा होने वाली गोपियां थी। उनमें परदारा विमर्शन का दोष कृष्ण में लगा ही नहीं सकते। और विक्रीडितं व्रजवधूभिरिदं च विष्णो श्रद्धा श्रद्धान्वितोऽनुश्रुणयादथ वर्णयेद्य भक्तिं परां भगवति प्रतिलभ्य कामं हृद्रोगमाश्वपहिनोत्यचिरेण धीरः। ये जो भगवान का ब्रजांगनाओं के साथ जो रासलीला का वर्णन हुआ, इसको जो प्रेम से सुनता है, दिव्य भाव से सुनता है, श्रद्धा से सुनता है, उसकी भगवान में प्रीति होती है, और उसके हृदय में जो संसार की वासना रहती है, काम वासना रहती है, वो नष्ट हो जाती है। यदि कोई कामी की कथा सुनेगा तो कामी की कथा से काम बढ़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण में इस लीला में कोई दोष देखेगा तो भाई वो अपना ही दोष देख रहा है, अपना ही दोष। हम काश देखते हैं, कहते हैं साहब ये देखो इसमें ये मस्सा कैसे आ गया? अरे ये चेहरे पर जो मस्सा है वो तुम्हारा ही मस्सा है भाई, काश क्या करेगा? भगवान में दोष देखते हैं। निज अज्ञान राम पर धरई, खुद की तो है काम वासना संसार की, उसकी जो है रखते हैं भगवान में। देखो भगवान ऐसा करते थे, भगवान गोपियों के साथ नाचते थे। भगवान की उम्र थी 7-8 वर्ष की थी, भगवान की उम्र 7 और 8 वर्ष के बीच में थे। 8 वर्ष के बच्चे कुछ भी नहीं समझते और गोपियों की उम्र थी बहुत बड़ी। और ये गोपियां वो गोपियां थी नहीं ना, स्वान स्वान दारान ब्रजऊ कस है, ये दिव्य भाव में एक दिव्य प्रेम की लीला थी। सुखदेव जी महाराज ने देखा कि परीक्षित को हम और कुछ बतावें, पर बतावें क्या, जब परीक्षित जैसा व्यक्ति भी जो कि अब मरने ही वाला है, 7 दिन के हिसाब से आज 5वें दिन की कथा है और ये मरने वाला है, इसके भी ऐसा भाव हो सकता है तो संसार में इससे गए गुजरे ही तो लोग सुनेंगे कथा, उनकी क्या दशा होगी और वो कृष्ण की लीला में कहां कहां संदेह पैदा करेंगे। उन्होंने बंद कर दिया रासलीला के प्रसंग को, बंद करके और नया प्रसंग छेड़ा। अब छेड़ दो भले ही, पर वो गूंज तो वही रहती है गूंज। हवाई जहाज से उतरते हैं कई देर तक माथे में गूंज रहती है, हवाई जहाज ऐसा गूंज रहती है। कहीं गहरे घुटन देश में चले जाओ तहखाने में और में बाहर आएंगे तब भी वो घुटन तो वैसी ही रहेगी कई देर तक। वृक्ष को आप काट दो पर उसका हरापन तो रहेगा ही कई देर तक, कुछ दिनों तक रहेगा हरापन। ऐसे ही रासलीला को इतनी मस्ती से कहा, इतनी मस्ती से कहा हमारे सुखदेव जी ने, अब उसको एकदम बदलना चाहते हैं। बदलना तो चाहते हैं पर करें क्या, उनके हाथ की बात नहीं है, वो गूंज उठ रही गूंज। तो कहते हैं एक बार की बात है, शिवरात्रि का त्योहार था और ब्रजवासी अंबिका वन में गए, वहां जाकर वे सरस्वती नदी में स्नान करके भगवान पशुपतिनाथ की पूजा करने के लिए बैठ गए। ब्राह्मणों को दान पुण्य दिया और सबके मन में एक ही इच्छा थी, देवो न प्रियताम इति, कृष्ण का प्रेम हमारा प्रेम कृष्ण के प्रति बढ़ता रहे, ये उनके मन में कामना थी। ये कामना होती है कि निष्कामना होती है, भगवान की इच्छा कामना नहीं होती, कामना होती है पराई की इच्छा, कामना होती है पराई की, भगवान पराई थोड़ा ही है। ऐसे वो इस भावना से गए थे। इसका अर्थ क्या है, जहां भी मंदिरों में जाओ, तीर्थों में जाओ, भगवान के सामने जाओ, हाथ जोड़ करके यही मांगो कि हे भगवान आपके अंदर हमारा अनुराग बढ़ता रहे, बस अनुराग बढ़ता रहे। वहां जाएंगे हाथ जोड़ेंगे, महाराज हमारी नौकरी लगा दो, हमारा परिवार का काम नहीं चलता है, हमारा काम चला दो, हमारे ये कर दो, हमारे वो कर दो। तो भाई ये भगवान के साथ में ठगाई करते हैं हम लोग, भगवान को नौकर बनाते हैं, नौकर। भगवान को नौकर नहीं बनाना चाहिए। अस्तु, वहां क्या हुआ कि ना ये नंद जी महाराज थे वो सोए हुए थे, एक सांप आ गया उनके पैर में लपेट गया है, तो सब लोग चिल्लाए, जल्दी जल्दी लकड़ी लेकर आए, भगवान को कहा कृष्ण कृष्ण तुम्हारे पिताजी को सांप ने पकड़ लिया। भगवान आए, सांप के लात लगाई, लात लगाते ही वो सांप में से दिव्य शरीर निकला। भगवान ने कहा रे बड़भागी कौन हो तुम, कि महाराज मैं तो विद्याधर योनि में पैदा हुआ सुदर्शन हूं, एक बार ब्राह्मणों को देख करके मैं बहुत हंसने लगा, वो ब्राह्मण थे दुबले पतले मरियल, तो उनको देखकर मैं हंसने लगा कि देखो ये भी कोई शरीर होता है, तो उन्होंने हमको सांप दे दिया, जाओ तुम सांप हो जाओ, तो सांप हो गया महाराज। आपकी कृपा से उन्होंने मुझे ये वरदान भी दिया कि जब कृष्ण अवतार होगा तो उनके चरणों से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तो आज मुक्ति हो गई महाराज। ये कथा क्यों कही, ये कथा इसलिए कही है कि भगवान की लीलाओं में और वो भी अंदर की लीलाओं में, प्रेम की लीलाओं में जो दोष देखता है उसकी कितनी अधोगति होती है, कि ब्राह्मणों का बाहरी रूप देखा और उसकी हंसी दिल्लगी उड़ाई तो एक विद्याधर योनि में रहने वाला सर्प योनि में चला गया। जैसे गंधर्व योनि होती है, देव योनि होती है, ऐसे विद्याधर योनि होती है। तो वो इतने ऊंचे शरीर से नीचे आ गया, पतन हो गया। इसलिए भगवान की लीलाओं में कभी दोष नहीं देखना चाहिए। कहते हैं एक बार रास लीला हो रही थी, श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों उसमें शामिल हुए। वहां पर शंखचूड नाम का एक कुबेर का सेवक आया,
उनको मना करो आवाज न करें।
एक शंखचूड नाम का कुबेर का सेवक आया, उसने देखा कि रासलीला में इतनी गोपियां जाती हैं, तो भाई इनके खूब आभूषण है, वो आभूषण पकड़ पकड़ के लूटने लगा। तो गोपियों ने देखा कि अपने तो भगवान को याद करो, तो जोर से चिल्लाई वो कृष्ण बचाओ बचाओ। तो कृष्ण और बलराम दोनों आए और आकर के शंखचूड को पकड़ लिया और पकड़ करके भगवान कृष्ण यहां पर माथे पर मुक्का लगाया तो मणि निकली। वो मणि भगवान ने बलराम जी को दे दी। ऐसी भगवान की लीला थी। अब देखो नशा उनके वही चढ़ रहा है, सुखदेव जी के कहना नहीं चाहते पर कहा जा रहा है कि जब श्री कृष्ण चले जाते तब गोपियां बंसरी नाद सुनते सुनते वो बोलती, आपस में बात करती। देखो ये युग्म श्लोक है, जैसे दूसरा और तीसरा, चौथा और पांचवा, छठा और सातवां, आठवां और नवा, ये दो दो श्लोकों का एक एक अर्थ है। इसमें क्या बताते हैं कि बंसरी है, ये बंसरी वादन कारण है और उसका प्रभाव किस पर क्या पड़ता है, किस पर क्या पड़ता है। एक श्लोक में बंसरी नाद का बजाना, बंसरी नाद का होना, और दूसरे श्लोक में उसका प्रभाव बताना, ये इसमें खास है। इसको युग्म बोलते हैं, युग्म। कहती है सखी, वाम बाहु कृत वाम कपोलो बलकित ब्रूर अधिरार्पित वेणुम कोमलांगुलि भिराश्रित मार्गम गोप्य ईरित यत्र मुकुंद। ये मस्ती में गा रहे, ये यहां बहुत मस्ती में गा रहे कि जब वे बाएं हाथ पर अपना बायां कपोल रख करके और यो कृष्ण जब बांसुरी बजाता है तब क्या होता है कि व्योम यान वनिता सह सिद्धेर विस्मिता सद उपधारी सलज्जा। ये उसका कार्य बताते हैं कि आकाश में रहने वाले जो आकाश में रहने वाली जो ये देवांगना है, जो विमान के ऊपर बैठी हुई है, उनको बड़ा आश्चर्य होता है सिद्धों के साथ में यात्रा कर रही है। तो उस समय में ऐसी मस्त हो जाती है कि उनको अपने कपड़ों का सुदबुद वगैरह कुछ भी नहीं रहता। और जब वो भगवान बंसरी बजाता हुआ है, जब हंसता है और उसकी हंसी यहां चमकने वाले आभूषणों पर गिरती है, तब ऐसी शोभा होती है भाई। देखो कि ब्रज के अंदर जितने ये बछड़े वगैरह हैं, वो उस समय में खाना पीना सब छोड़ देते हैं, ऊंचा कान करके केवल सुनते रहते हैं। और वो गायों का नाम ले लेकर के, बंसरी से गायों का नाम ले लेकर के पुकारते हैं, तब यमुना नदी का जल स्थिर हो जाता है। ऐसे करते करते जब ये खूब बढ़िया बंसरी बजाते हैं, उनकी बंसरी के नाद को सुनने के लिए हमारे शंकर भगवान आ जाते हैं, ब्रह्मा जी आ जाते हैं और आकर के रास्ता रोक देते हैं। गोपियां कहती है यशोदा जी से, यशोदा जी इसको बंसरी नाद किसने सिखाया, क्यों भाई? अरे यशोदा तुमने सुना नहीं, ऐसी बढ़िया बंसरी बजाता है कि शक्र सर्व पुरमेष्टि पुरोगाह, देवता इंद्र शंकर और जो है परमेष्टि माने ब्रह्मा, ये सब आकर के आनत कंधर चित्ता। ये कंधर, ये वो कंधा और ये सिर एकदम झुका लेते हैं, एकदम वो मस्त हो जाते हैं। और देखो जिस समय भगवान चलते हैं तो भगवान के जो चरण हैं वो पृथ्वी पर पड़ते हैं तो पृथ्वी को बड़ी शांति मिलती है, क्यों गायों के और इनके दौड़ने से पृथ्वी एक तरह से दुखी हो जाती है, तब भगवान के चलने से वो पृथ्वी को बड़ी शांति मिली। बंसरी बजाते तो पृथ्वी के ऊपर भी उसका असर पड़ता है, मंद मंद वायु चलती है, तो उस समय में ये बंसरी बजाता हुआ बहुत अच्छा लगता है। मद भी घूर्णित लोचन है ईषद मानद है, और वो जिस समय बंसरी बजाता है उसकी तान की मस्ती में आकर जब वो नेत्रों को मटकाता है तब उस समय देखो सब उसके उनके आकृष्ट हो जाते हैं, सब उसमें आकृष्ट हो जाते हैं। ऐसी ऐसी ये ब्रजांगनाएं आपस में बात करती थी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं अथ अथ माने अब तुम आगे की बात सुनो। एक अरिष्टासुर था जो बैल बन करके गया और जाकर के चौपाल में खड़ा हो गया। भगवान कृष्ण एक साथी के कंधे पर हाथ रखे हुए थे और वो निर्भय होकर खड़े थे, तो वृषभासुर आया और वो कृष्ण की तरफ जोर से सींग मारने के लिए आया, तो भगवान ने उसके सींग पकड़ लिए और उसको जोर से धक्का दिया और धक्का देकर के भगवान उस पर कूद पड़े और वहीं पर वो समाप्त हो गया। देवताओं ने फूलों की वर्षा कर दी। अरिष्टासुर मारा गया। घूमते घामते हमारे नारद जी महाराज कंस के पास पहुंचे। कंस से कहा, बोलो कंस क्या हालचाल है? बस यही रहो अभी आप, हालचाल तो बस अब कह दिया ना। क्या? कि वो जो एक नंद जी के दो छोकरे बड़े उत्पात करते हैं, उनके उत्पातों की बात मैंने बहुत सुनी है, तो मैंने अरिष्टासुर को भेजा है। अब देखो उसकी मृत्यु का समाचार आने ही वाला है, कृष्ण बलराम की मृत्यु का समाचार आने ही वाला है, वो तो मैं लेके आया हूं। आप लेके आए हो? क्या समाचार है महाराज? वो अरिष्टासुर मारा गया। आप कहते हो कोई समाचार कृष्ण के मरने का देगा, वो तो मैं आपको समाचार सुनाता हूं, वो तो मर गया। और आपको ये समाचार किसी ने दिए कि नहीं कि कृष्ण कौन है? ये समाचार नहीं दिए, नंद जी का छोकरा बताते हैं। और हमने जिनको भी भेजा वो वापिस नहीं आए। ये है कौन मुझे पता नहीं चला। अरे कंस, यही वो देवकी का आठवां बेटा है। ये देवकी का आठवां बेटा है? मुझे इतने दिन तक छिपाया, उस कन्या को लेकर के ऐसे रोई जैसे कन्या इसके यहां जन्मी। अरे कन्या तो माया थी, माया, उस माया के प्रभाव से कृष्ण को बचाना था जो बचा लिया, और उस माया ने ही देवकी के अंदर एक अनुराग पैदा किया और तुम्हारे अंदर भय पैदा किया, तो देवकी ने मेरे साथ छल किया, वसुदेव ने छल किया। नारद जी अभी मैं जाकर इसी तलवार से उन दोनों को पहले मारूंगा, आठवां बेटा तो मारेगा जब देखा जाएगा, मेरे साथ इतना बड़ा छल करने वाले वसुदेव को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। नारद जी ने कहा, अरे कंस क्या करते हो? ऐसा करोगे तो तुम एक बहुत बड़े अपवाद के विषय बन जाओगे, तुम दूसरा ही काम करो ना। क्या? तुमको मारना ही है तो थोड़ा उन आठवें बेटे को मारो ना। तुमने भी वसुदेव और देवकी को मार भी दिया तो वो तो जिंदा रह गया, वो तुमको मारेगा तो उनकी मृत्यु का फल तुम्हें तो नहीं मिला ना। और यदि तुमने कृष्ण को मार दिया तो उसकी मृत्यु का फल क्या होगा कि तुम जीवित रह जाओगे। इसलिए भाई ऐसा लगता है कि तुम जो है वसुदेव और देवकी को मारो मत। तो वसुदेव देवकी को नहीं मारूंगा तो जेल खाने में तो डालूंगा ही। हाँ, जेल खाने में डालो, तुम्हारी मर्जी, हम नहीं बोलते, परंतु इनको मारने से कोई लाभ नहीं है। जेल खाने में बंद कर दिया। नारद जी तो चले गए, अपना इतना ही काम करना था। देखो नारद जी क्या करते हैं, जैसे दीपावली के समय में छोटे बच्चे हैं वो फटाका होता है, फटाका उसकी एक जो है नोक निकली हुई रहती है, उसके वो दिया सलाई लगा दे और भग जाए और वो अपने आप फूटे, आवाज हो कुछ भी हो बोले, ऐसे ही नारद जी थोड़ी तूली लगा दे और भग जाए। वहां तूली लगा दी और भग गए नारद जी। नारद जी यहां से कहां गए मालूम है? ब्रज में गए थे और दो बात भगवान को भी कहने के लिए गए थे। अब इधर जो है कंस ने बड़े बड़े इन सब लोगों को बुलाया, मुष्टिक चाणूर वगैरह को, ख्याल देखो भाई अब हमको पता चल गया है कि ये कृष्ण और बलराम है, इसमें कृष्ण देवकी का आठवां बेटा है, अब इसको मारना है। सीधा जाकर के तो कोई आज तक मार सका नहीं इसको, तो इन्होंने हमारे साथ छल किया, हम भी इनके साथ छल करेंगे। आकाशवाणी ने भी तो छल किया, माया ने भी तो छल किया, और देवकी ने भी तो छल किया, आठवें बेटे ने भी तो छल किया, सबने छल किया, तो एक छल हम भी करेंगे। यहां अपने कुश्ती का एक दंगल रखते हैं, वहां हाथी को बाहर दरवाजे पर खड़ा कर देंगे, और वहां आप लोग कुश्ती के बहाने से कृष्ण को मार देना। चिंता मत करो, मारा चिंता छोड़ दो, आप तो उनको बुलावे जैसी बात करो। तो आप किसको भेजे? तो अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी से कहा, अक्रूर जी आप जैसे तैसे कृष्ण को ले आओ, मेरे पास बड़े बड़े पहलवान है, वो मार देंगे, फिर मैं उग्रसेन को मार दूंगा, फिर मैं यहां का राजा बन जाऊंगा, जरासंध मेरा ससुर है और दूसरे मेरे मित्र लोग हैं, ये मेरे पक्ष में रहेंगे, सारी पृथ्वी पर मेरा शासन रहेगा और मैं बड़ा सुखी हो जाऊंगा। अक्रूर तुम ये काम करो, तुम इतना ही कहो कि एक बहुत बड़ा धनुष है और धनुष यज्ञ हो रहा है, उस धनुष यज्ञ के लिए तुम चलो, इतना ही कह देना। तुम इस बहाने से ले आना, पहलवानों का नाम मत लेना। कहा कि देखो महाराज, जाकर के लाने का प्रयास तो मैं कर लूंगा, पर आप इतनी बड़ी बड़ी कल्पना करते हो ना, तो इससे कभी मनुष्य को नुकसान होता है। मनुष्य को सिद्धि असिद्धि में सम रहना चाहिए। बड़े ऊंचे ऊंचे मनोरथ करता है तो वो अंत में जाकर शोक को ही प्राप्त होता है। ठीक है, मैं अभी चलता हूं, ऐसा कहकर के वो तो अपने वहां आ गए, घर पर आ गए। अब देखो बीच में सुखदेव जी महाराज दूसरी कथा छेड़ देते हैं कि एक केशी नाम का गया राक्षस घोड़ा बन करके, भगवान ने उसके मुंह में हाथ दे दिया और वो वही खत्म हो गया। नारद जी महाराज आए भगवान के पास, महाराज अब तो बस आपका बहुत बड़ा काम तो अब देखने को मिलेगा, सबकी आत्मा हो, निराकार हो, और निराकार से आप साकार हुए हो, आहो अब तो कई लीलाएं आपकी देखी जाएगी, अब तो आप कंस को मारोगे और फिर जो है आपकी शादियां होगी, फिर जो है आप शिशुपाल दंतवक्त सबको मारोगे, फिर भी इतना करते हुए भी विशुद्ध विज्ञान घनम, आपका ज्ञान कभी इन कर्मों से लुप्त नहीं हुआ करता, ऐसा आपका दिव्य ज्ञान दिव्य भाव वो महाराज सब कुछ करते हुए भी आपका डगमगाता नहीं है। हे प्रभु आपकी लीलाएं बाकी है। अब भी देखो इनको आगे की कथा कहनी चाहिए, फिर भी एक मयासुर के बीच में ही मयासुर के पुत्र की व्योमासुर की कथा एक अलग ही चालू कर दी। बच्चों को छिपा देता था वो, खेल खेल में लुकमीचनी के खेल में वो बच्चों को छिपा देता है, भगवान को पता चला उन्होंने उस राक्षस को मार दिया। हाँ तो मैं तुमको ये कह रहा था कि अक्रूर अपने घर पर आए, रात्रि भर अक्रूर को नींद नहीं आई, कहा कल भगवान के वहां जाऊंगा, कृष्ण के वहां जाऊंगा। देखो कृष्ण मिलन की एक वेला होती है जब मनुष्य निद्रा आदि से ऊपर उड़ जाता है, तब उस समय में इतना आनंद आया उनको, कहते हैं भक्ति पराम उपगत है, परा भक्ति को प्राप्त हो गए हमारे अक्रूर जी महाराज। अक्रूर जी महाराज रस्ते में चल रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैंने कौन सा ऐसा पुण्य किया तप किया कि कंस ने मुझे भेजा है। देखो कंस जैसे आदमी ने मुझे भेजा है, दुनिया के लिए कंस खूब खराब हो सकता है पर मेरे लिए तो कंस बहुत अच्छा है, जो भगवान की तरफ लगा है वो बहुत अच्छा और जो भगवान की तरफ लगे वो भी बहुत अच्छा। भगवान की तरफ लगता है वो आदमी जीता हुआ होता है और जो भगवान से विमुख होता है वो मरा हुआ होता है, मरा हुआ। प्राणंति सुभंति पुनंति वही जगत यास्तद विरक्ता शव शोभनामता, भगवान के प्रेम से रहित आदमी होता है वो चलता फिरता मुर्दा है, चलता फिरता मुर्दा। पर मैं भगवान के पास जा तो रहा हूं, वो कहेंगे कि अरे कंस का दूत आया है, वो मुंह फेर लेंगे तो नहीं नहीं नहीं, ऐसे भी नहीं है। मैं उनके चरणों में गिर जाऊंगा और अपने चरणों में गिरे हुए को देखकर तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। इतने में ही भगवान के चरण दिखाए उनको, वे रथ से उतर करके उस चरणों में लोटपोट हो गए, खेल रहे थे भगवान जंगल में, चरण दिखाए तो लोटपोट हो गया, भगवान के चरणों की धूलि मिल गई, खूब उसमें स्नान किया उन्होंने। फिर उसके बाद वे सायंकाल होते होते भगवान की गौशाला में गए। उस समय यशोदा मैया दूध निकाल रही थी, गाय को दूह रही थी, और कृष्ण और बलराम दोनों माँ के पास बैठे हुए थे। इतने में अक्रूर जी वहां आ गए। अक्रूर जी को आते देखकर भगवान ने गाय को भी छोड़ दिया, माँ को भी छोड़ दिया, दूध को भी छोड़ दिया, सबको छोड़ करके अक्रूर जी से जाकर के मिले, आइए आइए अक्रूर जी आइए। भगवान ये बताना चाहते हैं कि मैं अपने भक्त से मिलने के लिए, सबको छोड़ने के लिए तैयार हूं, क्योंकि भक्त भी तो सबको छोड़कर मेरे से मिलता है ना। अक्रूर जी से खूब प्रेम से मिले, खिलाया पिलाया, और सायंकाल में सब लोग बैठे, तब अक्रूर जी ने सब बात बताई। भगवान ने पूछा आप कैसे आए, कैसे, तो सब बात बताई। तो कहा कि अच्छी बात है, अब कल चलेंगे, अपने लोग जरूर चलेंगे। यशोदा जी के मन में बड़ा विचार आया कि ये तो कल चला जाएगा। सारे गोपियों को पता चला, गोपियों ने आकर के रब भाई आपस में चर्चा की कि क्या करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, जाने की तैयारियां हो रही है, वो देखो रथ तैयार हो रहे हैं, वो देखो सामान लाला करके जो है रखा जा रहा है। अब गोपियां उस रथ के थोड़ी दूर पर जा इकट्ठी होकर आपस में बात करते हैं कि अरे विधाता तेरे में कोई दया नहीं है, पहले तू लोगों को मिलाता है, फिर तू उनको आपस में वियोग करा देता है, कैसा सुंदर श्यामल उसका मुख हमको पहले दिखाया, अब तू उसको अदृश्य करवा रहा है। सखी इसका क्या नाम है जो अभी मथुरा से आया है, कि इसका नाम अक्रूर है? नहीं नहीं नहीं, अक्रूर तो वो होता है जिसमें खूब दया होती है, ये तो बड़ा क्रूर है, क्रूर, इसको अक्रूर कहना किसने सिखा दिया, ये अक्रूर है ही नहीं। एक सखी बोलती है क्यों बिचारे आए हुए आदमी के लिए ऐसी बात करती हो, ये तुम्हारा नंद नंदन कौन सा सचला रहने वाला है, ये सबसे प्रेम करना चाहता है सबसे, इसको भी तो अब मथुरा में रहने वाली स्त्रियों से प्रेम करना है ना, इसलिए ये तो अब यहां से जाएगा। इसको पता है कि ब्रज की स्त्रियां तो हमसे प्रेम करने लग गई, अब हमको छोड़कर और में प्रेम करने वाली है नहीं, और औरों से प्रेम करेगी भी कैसे, क्योंकि पति पुत्रादि में तो इनका प्रेम रहा ही नहीं, और इनमें किसमें प्रेम करेगी, अपन चलो अपने अपना आप ही देख जाएगी, अपने तो जाकर के मथुरा वालों से प्रेम करो। तो देखा नहीं कैसे मीठी मीठी बातें हमसे करता था, कोई बात नहीं ये मथुरा वाले भी देख लेंगे, थोड़े दिन ये भी इनसे से प्रेम कर लेंगे, ये कौन सा मथुरा में ही हरदम रहेगा। पर हे सखी, कृष्ण ने उस दिन तो रासलीला में हमको बुलाया, बड़ी प्यार से बातें की, और आज तो ये हमको आकर के ये भी नहीं कहता है कि देखो गोपियों तुम यही रहना, मैं अभी बाहर जाता हूँ फिर वापिस आऊंगा, कोई आश्वासन भी नहीं दे रहा है, क्या बात है। चलो चलो ऐसा करो, अपने हड़ताल कर दो, रास्ता जाम कर दो, चक्का जाम कर दो, और उनके सारे रथ के चारों तरफ अपने सब पसर जाओ, और कहो कि ये तुम्हारे घोड़े हमारे को चीत चीत करके जाएंगे, तब जो है तुम जा सकते हो, चलो चलो ऐसा करो। कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ये प्रेमियों का मार्ग नहीं है सखियों, ये हटियों का मार्ग है। भगवान के प्रेम में और हट और दुराग्रह में कभी बनती नहीं है, ये प्रेमियों का मार्ग नहीं है, ऐसा मत करो। प्रेमियों के मार्ग में तो प्रेमी के मन की जो बात हो उसमें खुश होकर के रहो, अच्छी बात है। तो क्या हम कृष्ण को मना न करें कि मना मत करो, कृष्ण को देखते रहो। कृष्ण ओझल हो जाए उसको याद करते रहो, तड़पते रहो, पर अपना दुराग्रह कृष्ण के सामने मत रखो। गोपियां विरह के अंदर डूबी हुई, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, रो रो करके वे कृष्ण को अपने मन के भाव बता रहे थे। भगवान ने कहा, अक्रूर जी जितना जल्दी हो सके इस रथ को यहां से रवाना करो, यह वेला ऐसी है कि इसमें जरा सा भी विलंब हो गया तो इन आंसुओं के दलदल में हमारा रथ फंस जाएगा। भगवान ने अपने मित्रों से कहा कि मित्रों, गोपियों को आश्वासन दे कि मैं आऊंगा और मिलूंगा। अक्रूर जी से कहा, जितना जल्दी हो सके रथ को आप जड़े वेग से चलाइए। देखते देखते ही वो रथ है चीरता वासा गया है, बड़े वेग से गया। वो प्यार बिचारी रथ को देखती रही, कहीं एक बार कृष्ण हमको देख ले, एक बार देख ले। धूड़ को देखती रही वो, जब तक धूड़ उड़ती रही, देखते देखते देखा कि धूड़ शांत हो गई तो रोती बिलकती गोपियां अपने घरों में आ गई। इधर अक्रूर जी महाराज बहुत दूर तक उस रथ को ले गए। फिर एक घनघोर जंगल आया, एक हरे भरे वृक्ष के नीचे ले जाकर रथ को खड़ा किया और अक्रूर जी ने कहा कि हे कृष्ण, मैं अभी संध्या करके आता हूं। क्या अच्छी बात है। वो जल में स्नान करने के लिए गए, डुबकी लगाई तो वहां एक शेषनाग देखा। शेषनाग के अंदर बड़ा दिव्य स्वरूप, श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप देखा। अरे कृष्ण सर पर लेटा हुआ है, उसको तो मैं रथ पर देख के आया हूं। योग स्नान करके ऊपर जल से ऊपर आई हूं, पीछे देखने लगे, देख ले कृष्ण और बलराम तो रथ पर बैठे बातें कर रहे हैं। फिर दोबारा उसने डुबकी लगाई तो कहा कि यन्मे मृषा किम सलिले तयो, ये क्या बात है, मैं जल में देख रहा हूं ये सत्य बात है, या मैं रथ में बैठे हुए इनको देख रहा हूं ये बात सत्य, क्या बात है, ऐसे क्या बात है, ये कौतूहल पैदा हुआ। तब डुबकी लगा के देखते हैं, ओहो अनंत नाग है और उसके हजारों हजारों सिर हैं जिनमें मणियां चमक रही हैं, उनकी गोद के अंदर दिव्य भगवान का रूप है, चतुर्भुज रूप है, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं, सुनंद नंद आदि पार्षद उनकी सेवा में हैं, प्रहलाद नारद आदि बड़े बड़े भागवत उनके पास उनकी स्तुति कर रहे हैं। इन सब को देख करके बारम्बार हाथ जोड़ करके हर्ष से पुलकित हुए हमारे अक्रूर जी प्रणाम करते हुए भगवान की स्तुति करते हुए कहते, हे महाराज यही आपका स्वरूप है जो सृष्टि का आदि कारण माना जाता है, आपके इसी नाभि से ब्रह्मा जी निकल करके संसार को बनाते हैं, परंतु ये जो सृष्टि बनती है ये इतना ही आपका रूप नहीं है, इतना ही रूप नहीं है, आपका रूप तो अनंत है। ज्ञानी लोग ज्ञान यज्ञ के द्वारा आपको ज्ञान शरीर वाला मानते हैं और भक्ति लोग अपनी भावना के अनुसार जो भी उनको अच्छा लगता है वैसा शरीर मानते हैं। भगवान दो शरीर वाले, दो हाथ वाले हैं, भगवान हजार हाथ वाले हैं, जैसा उनको अच्छा लगता है वैसा मानते हैं और सबका मानना सही होता है। ये चराचर जगत भी तो आपका रूप है, अग्नि आपका मुख है, वायु आपका प्राण है, दिन और रात आपकी पलकें हैं, ये भी तो आपका रूप है। और फिर आप कई अवतार भी तो लेते हैं, कभी आप कूर्म अवतार लेते हैं, कभी आप मत्स्य अवतार लेते हैं, कभी वामन अवतार लेते हैं, कभी नृसिंह अवतार लेते हैं, आगे जाकर बुद्धा अवतार भी आप ही लेने वाले हैं, कल्कि अवतार भी तो आप ही लेने वाले हैं। बस ज्यादा हमारी कोई इच्छा नहीं है, हमारी तो एक ही इच्छा है महाराज कि अनात्म विषयों से हमारा मन हटे और अपने आत्म स्वरूप आपके चरणों में हमारा प्रेम बढ़े और इस जगत में जगह जगह जहां भी जाए हमको आपके प्रेमी जनों का संग मिले, और हम कुछ नहीं चाहते हैं। ऐसी स्तुति करके बड़े भाव में डूबे डूबे अक्रूर जी आकर अपने रथ में बैठ गए और रथ को चलाने लगे। उस समय भगवान ने कहा, चाचा जी क्या बात है, आप चुप क्यों हैं? आप ब्रज में आए थे, बड़े आपके चेहरे पर चंचलता थी, अब तो एकदम चुप हो गए, गंभीर हो गए। आपने जल के अंदर कोई आश्चर्य की चीज देखी थी क्या? अक्रूर जी भाव विवल हो गए, कहने लगे, कृष्ण इस संसार में जो कुछ आश्चर्य है वो तुमको छोड़ करके थोड़ा ही है, जो भी मैंने देखा है वो सब तुम्हारे अंदर ही देखा है। ऐसे करते अक्रूर जी भगवान के प्रेम में डूबे डूबे मथुरा आ गए, और पीछे से ये नंद वगैरह भी आ गए, गोप वगैरह आ गए। तो भगवान ने अक्रूर जी से कहा कि देखो अब अक्रूर जी हमको यही उतार दो, हमारे पिताजी भी आ गए, हमारे सखा लोग भी आ गए, हम सब अब यही रहेंगे, आपस में साथ ही रहेंगे। अक्रूर जी ने कहा, महाराज आपका साथ ही दुर्लभ है, आपका साथ मिल गया मैं आपका त्याग नहीं कर सकता हूं, मुझे मेरी कुटिया अच्छी नहीं लगती, मुझे मेरा परिवार अच्छा नहीं लगता, आप ही सब कुछ मेरे आधार हो, आपके चरणों को धोकर मैं पवित्र होना चाहता हूं, आप मुझे आदेश दें कि मैं रथ को अपने घर पर ले चलूं। नहीं नहीं ऐसा मत करना अक्रूर जी, अभी वो घर तुम्हारा नहीं है, अभी वो घर कंस का है, और अभी आप मेरे पास आए हो तो मेरे भक्त होकर नहीं आए, कंस के दूत बनकर के आए हो। ये अलग बात है कि तुमने अपने अंदर से अपने आप भक्ति प्राप्त कर ली, पर व्यवहार में आप कंस के दूत हो, तो आप अपने काम को पूरा करो, अपने घर पर चले जाओ। देखो अक्रूर जी, कंस को मारकर मैं अपने आप ही तुम्हारे घर पर आ जाऊंगा, पर ये बात किसी से कहने की नहीं है। अक्रूर जी महाराज वहां से रवाना हो गए। कंस से बोले, महाराज कंस की जय हो, आइए आइए अक्रूर जी, क्या बात है, कृष्ण और बलराम को मैं ले आया हूं और वे मथुरा नगरी के उपवन में बाहर ठहरे हुए हैं, अपने साथियों और अपने पिता नंद के साथ वहां विश्राम कर रहे हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छा किया। अंदर तो घबराहट हो गई, देवकी का आठवां बेटा आया है, अंदर इतना उसका मन टूट गया और ऊपर से कहता है अच्छा किया। अक्रूर जी तो अपने घर चले गए। अब भगवान तो भगवान, भगवान ने साथियों से कहा, ऐसा करो भाई पहले मथुरा की सब गलियां देख तो लो, कूद पांद के समय में बहुत काम आएगी, कूदेंगे फादेंगे जाएंगे, गलियां देखी हुई ठीक रहेगा। अब मथुरा के अंदर गए, झुंड का झुंड गया है, ब्रज का झुंड। अब वो देखते हैं जिस गली में जिस मार्ग से जाते हैं वहीं पर स्त्री पुरुषों का समुदाय इकट्ठा हो जाता है। अरे ये वो है कृष्ण, ये देवकी का आठवां बेटा, अरे इसकी बातें हमने सुनी, इसने गोवर्धन पर्वत को धारण किया, ओहो ये वो है छोटा सा बच्चा दिखने वाला। स्त्रियों के मन में ऐसा प्रेम हुआ कि उन्होंने छबड़ियां भर भर करके कृष्ण भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा कर दी। अभ्यवर्षन सौ मनस्य ही प्रमदा बल केशव, भगवान सबकी बातें सुन रहे थे। आगे एक धोबी मिला, भगवान ने कहा, धोबी जी ये कपड़े हम पहन ले हुए कि नहीं? नहीं ये तो जो मथुरा का राजा होता है ना वो पहना करता है, मथुरा का राजा तो पहनता है ना, कि मथुरा का राजा पहनता है, कि अब मथुरा का राजा तो हम ही है, हम नहीं आए तब तक कोई और हुआ होगा, अब हम है यहाँ के राजा। वो धोपी आनाकानी करे, तुम मथुरा के राजा बनोगे। गांव के छोकरे कहेंगे, कैसे बोलते हो? ये महाराज आदिराज मथुरा नरेश कंस महाराज के वस्त्र हैं। अच्छा, तुम नहीं दोगे, हमको नहीं देंगे। अच्छी बात है, तुम नहीं दोगे तो हम तुमको कुछ दे देते हैं। अब भगवान ने उठा के एक थप्पड़ लगाई उसके, वो वहीं पर खत्म हो गया। और वो थल थल करते हुए ढीले ढीले वस्त्र थे, पास में एक दर्जी था, दर्जी के वहां गए, कहने लगे, लो दर्जी महाराज, आप ये हमारे कपड़े ठीक कर दो। उसने कहा, ठीक कर दो तो ठीक है, नहीं तो ये हमको कहीं ठीक ठिकाने लगा देगा। तो सब दर्जी ने खूब अच्छा कपड़ा पहना दिया उनको काट पीट करके। फिर वहां एक सुदामा नाम का माली मिला। उस माली से भगवान ने कहा, रे भाई, हमको यहाँ किसी ने फूलमाला नहीं चढ़ाई, जरा तुम फूलमाला हमको दो। बड़ी अच्छी फूलमाला दी तो कहा, देखो कीमत वगैरह हमारे पास नहीं है कि महाराज कीमत तो देनी पड़ेगी आपको। क्या लोगे भाई? बस आपके चरणों में मेरा निरंतर प्रेम रहे। अच्छी बात है, तथास्तु। आगे गए तो एक शैलेंद्री मिली। शैलेंद्री के हाथ में एक थाली, थाली में कई कटोरिया, कई तूलिका। भगवान ने कहा, कौन हो तुम? कि महाराज, मैं महाराज कंस की, मथुरा नरेश की शैलेंद्री हूं। क्या काम तुम्हारा? उनके पाउडर वगैरह लगाता हूं, उनको अच्छा बनाता हूं। तो लाओ हमको भी अच्छा बनाओ, आओ हमारे पास। तो पास में आए तो भगवान का स्वरूप देखा कि अरे इनको मैं क्या अच्छा बना सकती हूं। फिर भगवान के ऊपर यू पाउडर लगाया और वो जो कुछ करना था वो किया। भगवान ने देखा, बिचारे ने इसने मुझे अच्छा बनाया तो मैं भी इसको अच्छा बना दूं। कहा, और मेरे नजदीक आओ। नजदीक आने करके भगवान ने अपने पैर उसके पैर पर रख दिए और उसके कंधे भाग यहां से पकड़े। पकड़ करके भगवान ने जोर से यूं झटका लगाया तो भाई उसका शरीर एकदम स्वस्थ हो गया। और स्वस्थ होकर के भगवान ने कहा, ठीक है भाई, हमारे मार्ग में आते हैं उनका इसी प्रकार से स्वरूप सुंदर होता चला जाता है। ऐसे करके भगवान धनुष की जगह पर गए और वहां भगवान ने जाते ही धनुष को तोड़ दिया। तो वहां रहने वाले सेवक लोग थे, वो चिल्लाए तो एक टुकड़ा तो दे दिया बलराम जी को और एक टुकड़ा ले लिया भगवान कृष्ण ने। दोनों ने मिल करके वहां रक्षा करने वालों की खूब धुनाई कर दी। तो वे लोग दौड़े दौड़े कंस के पास गए। अब एक साथ लोगों की शिकायतें गई, महाराज आपके धनुष को तोड़ दिया है, अभी जो आप एक शब्द सुने थे वो आपके धनुष के तोड़ने का, हमारा धनुष को इसने तोड़ दिया। वो धनुष तो महाराज क्या बताएं? बताओ, महाराज की जय हो, आपके धोबी को मार दिया है। किसने मार दिया? चुप हो गए, बोलते क्यों नहीं हो? महाराज की जय हो, कौन हो तुम? मैं आपकी शैलेंद्री हूं महाराज। अरे शैलेंद्री, तुम तो शरीर से झुकी हुई थी, टेढ़ी मेढ़ी थी, तो तुम सीधी कैसे हो गई? महाराज, ब्रज से यहां बलराम एंड कृष्ण कंपनी आई हुई है और उसने टेढ़ों मेढ़ों को सीधा करने का वचन ले रखा है। जितने यहां टेढ़े होंगे सबको सीधा करेंगे। धनुष को उसी नहीं तोड़ा है, धोबी को उसी नहीं मारा है और मुझे भी उसी ने सीधा किया है। कंस घबरा गया एकदम। कंस को इधर रात भर नींद नहीं आई और उधर हमारे भगवान श्री कृष्ण अपने पिताजी के वहां गए रहे तो उन सब ने मिलकर के वहां पर बड़ा आनंद के साथ खीरानंद बनाया। खीरानंद एक खीर होती है, खीरानंद होता है। खीरानंद होता है ना, उसमें खीर की तरह ही बनाते हैं पर दूध थोड़ा कम डालते हैं, उसमें घी मिलाते हैं, घी मिला के खीरानंद बनाते हैं। वहां खूब बढ़िया खीरानंद बनाए। मथुरा में देखो, कंस तो खाया नहीं पिया नहीं, रात भर वो वहां चिंतित होकर के रहा। और भगवान ऐसे ही निश्चिंत और भगवान के शरणागत भक्त ऐसे निश्चिंत कि मथुरा के अंदर रह करके कंस की नगरी में उसके शासन में रह करके ऐसे मस्त आराम से खीरानंद खा करके सोए, लिखा है इसमें खीरानंद, भुक्त्वा क्षीरोप सेचनम, भुक्त्वा क्षीरोप सेचनम, ऐसे वो जाकर के खीरानंद खाकर मस्ती से रहे। कंस है वो रात्रि में जब थोड़ी बहुत नींद आती है तो खराब खराब सपना देखता है, और नींद से जगता है तो सिवाय डरने के अलावा कोई उसके लिए चारा नहीं रहा। ऐसे करते करते उसकी रात बीती, प्रातःकाल हुआ और रंग भूमि में सब इकट्ठे हो गए, भगवान भी वहां पर गए। महावत से कहा, महावत जी हमको अंदर आने का रास्ता दीजिए। महावत जी ने कहा, कौन हो तुम? हम कृष्ण और बलराम हैं, और हम ब्रज से आए हुए, मेरे साथी हैं, मेरे पिता हैं ये। अरे कृष्ण, और तो लोग जा सकते हो, तुम दोनों नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? पहले इस हाथी के साथ में तुम्हारा युद्ध होगा। अजी महावत जी, आप हमको रास्ता दे दीजिए। क्यों? तो आप अपनी जिंदगी को खतरे में डालते हो, क्यों बेचारे हाथी को डालते हो? नहीं माने, नहीं माने तो भगवान ने उसका पूंछ पकड़ा हाथी का, पीछे से पूंछ पकड़ करके और उसको खींचे और 25 धनुष पीछे ले जाके पटक दिया। हाथी गुड़क गया, महावत जी का तो पता ही नहीं चला। भगवान गुड़के हुए उस हाथी के ऊपर जोर से कूदे, हाथी वहीं पर खत्म हो गया। और एक दांत तो बलराम जी को दे दिया और एक दांत उन्होंने खुद अपने पास रख लिया। बड़ी मस्ती के साथ चलते चलते वो रंगभूमि में आ गए। रंगभूमि में आए तब जो है, एक साथ जब ये प्रवेश किए तो लोगों की सबकी दृष्टि कृष्ण और बलराम पर गड़ गई। लोग आपस में बात करने लगे, कौन है ये, कौन है? तो जिसकी जैसी भावना थी वैसी वैसी वृत्तियां पैदा हुई। अरे ये बड़ा भारी कोई पहलवान है, पहलवानों को वो पहलवान दिखने लगे। स्त्रियों को लगा कि हमने कामदेव को सुना सुना है, कामदेव कैसा होता है वो देखो, वो कामदेव है। और गोपों को लगा कि अरे हमारा कन्हैया आ गया। देवकी और वसुदेव जी भी वहां थे, उन्होंने कहा हमारा बच्चा आ गया। कंस ने देखा, अरे मौत तो इसका नाम है, इसका नाम मौत है। ऐसे अलग अलग भाव पैदा हुए। लोग एक टक होकर के कृष्ण और बलराम को देखते थे, मानो इनको पी लेंगे, नेत्रों से पी लेंगे, जीभ से चाट लेंगे, नासिका से सूंघ लेंगे, भुजाओं में इनको हम बांध लेंगे। अरे ये वो कृष्ण और बलराम, भूतना को इन्होंने मारा, बकासुर अघासुर को इन्होंने मारा, और वर्षा से इन्होंने रक्षा की, काली नाग को इन्होंने दूर कर दिया। हाँ साहब यही है। ऐसे लोग आपस में बातें कर रहे थे, भगवान और आगे आए, और आगे आकर के और कंस की तरफ, मंच की तरफ आने लगे तो चाणूर मिले। आइए आइए नंदनंदन जी, आइए, बहुत अच्छा हुआ आप आ गए। महाराज कंस की रंगभूमि में चाणूर आपका स्वागत करता है। ये चाणूर आपसे युद्ध करना चाहता है, मल्ल युद्ध, कुश्ती का युद्ध करना चाहता है। ये मंच पर विराजमान हमारे कंस महाराज आपके और हमारे कुश्ती के युद्ध से बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। हमारा कर्तव्य है कि हम महाराज को प्रसन्न करें। अरे चाणूर जी, आप हमसे कहां युद्ध करने चले हो? हम छोटे से बच्चे हैं भाई, छोटे बच्चे हो। हजार हाथियों का बल वाला ये कुवलिया पीड़ हाथी, उसको तुमने मार दिया और अभी भी तुम बच्चे ही रहना चाहते हो? आओ मेरे से युद्ध करना पड़ेगा, बलात् युद्ध करूंगा मैं, बलपूर्वक। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान ने को, भगवान को तो लीला करनी थी। चाणूर आया और भगवान के सामने ताल ठोकने लगा तो भगवान और चाणूर और मुष्टिक और बलराम जी दोनों की खूब देर तक आपस में कुश्तियां होती रही। सारी सभा में हाय हाय मच गया कि भग जाओ यहां से, भगो, ऐसी कोई सभा देखने लायक है? कहां तो ये कोमलांग कृष्ण और कहां ये वज्रांग चाणूर है, बड़ा अन्याय हो रहा है, चलो यहां से। किसी ने कहा, अरे डरो मत, कैसे कैसे राक्षसों को कैसे कैसे मारा, इस बात को तो आपने सुना है और आज देखने का मौका मिला है, आप इस चीज को देखने से घबराओ मत, ऐसे करके लोग तो बातें कर रहे थे, इतने में ही भगवान ने चाणूर को उठा उठा के पटकना चालू किया तो जगह जगह से यहां से हड्डी टूट गई, कमर टूट गई, पैरों की हड्डियां टूट गई। अब उससे उठा बैठा न जा, भगवान छाती पर बैठ गए, एक मुक्का मारा मुंह पर चाणूर का, वहीं पर कचूमर निकल गया। किसने कहा आपको? आपको मालूम है इसमें लिखा है कि धुंधवी धुंधवी नहीं बजी। क्यों नहीं बजी? कि कंस का भय था, किसी ने भी धुंधवी नहीं बजाई। लेकिन आप बजा सकते हो, क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के साथी लोग वहां आए हुए थे, उन साथियों ने अपने पास की धुंधवी वो बजाना चालू किया, देवताओं ने नहीं बजाई डर के मारे। इसमें लिखा हुआ है चाणूर मर गया, फिर मुष्टिक को भी मार दिया, और लिखा है कि वाद्यमानेषु तुरीयेषु, किसने? गोपान वयस्यान आकृष्य, ये गोप है ना, इन गोपों ने धुंधवी बजाई थी ये सब। अब भोजराज कंस जो है उसको पता चला ये बात ऐसी हो गई है कि इस प्रकार से एक बोलिया पेड़ हाथी को भी मारने वाले, चाणूर इनको मारने वाले यही है। तो अब वहां पर जोर जोर से चिल्लाने लगा, कौन है ये लोग, ये कौन कृष्ण है, कौन बलराम है, ये कैसे वसुदेव जी के बेटा है, इनको मैं देख लूंगा, नंद को बांध लो, इन बेटों को बड़ा करके इसने हमारे साथ अत्याचार किया, नंद को बांध लो, वसुदेव को मार दो, उग्रसेन को मार दो, ये मेरी आज्ञा है। ऐसे करके वो बकने लगा। भगवान थे उधर दूर, भगवान वहीं से ही उचक करके बिना किसी बीच का सहारा लिए सीधे लपक करके ऊपर आए मंच पर। वो अपने आसन से खड़ा हुआ, हाथ में तलवार लिए, मुझे नहीं बोले, मेरे से लड़ाई करेगा, देखता हूं तू मुझे कैसे मारता है। ऐसे तलवार ऊपर की, भगवान ने उसके जोर से हाथ के झटका लगाया, तलवार कहीं गई, मुकुट भी गिर गया, और भगवान ने सीधे केस पकड़े, केस पकड़ करके जोर से झटका लगाया तो वो सीढ़ियों से गुड़ता 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 नीचे गया, और ऊपर से भगवान उसकी छाती पर कूदे और कंस वहीं पर समाप्त हो गया। और अब दन देवताओं ने जी भर करके धुंधवियां बजाई, खूब धुंधवियां बजाई, बजाते ही गए बजाते ही गए बजाते ही गए। इस प्रकार से जब धुंधवियां बजी तब जो है सब लोग बहुत आनंद में डूब गए कि वाह बहुत अच्छा हुआ बहुत अच्छा हुआ, सबके मन में प्रसन्नता हुई। कंस की पत्नियों ने आकर जरूर विलाप किया कि हमने आपको पहले ही कहा था कि निरपराध प्राणियों को आप मारते हो, एक दिन दुनिया में आपकी दुर्गति होकर के रहेगी, सो हो ही गई है। इधर भगवान ने वसुदेव और देवकी को छुड़ा दिया कैद खाने से, उग्रसेन को राजा बना दिया, और बड़े प्रेम से नंद जी को वहां से विदा कर दिया, और स्वयं वहां जनेऊ धारण करके और उज्जैनी में गए, 64 दिनों में 64 विद्याओं का अध्ययन किया, और गुरु दक्षिणा में मरे हुए गुरु पुत्र को लाकर दे दिया, और बड़े आनंद का शंख बजाते हुए भगवान मथुरा में आकर विराजमान हो गए। अब इसके बाद की कथा कल के प्रसंग में कही जाएगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद
सियावर रामचंद्र की जय, भोर
मुकुटवंशी वाले की
जय।
बाल कृष्ण भगवान की
जय।
गोपाल कृष्ण भगवान की
जय।
रास रासेश्वर भगवान की
जय।
श्री वेद व्यास जी महाराज
की जय।
सुदेव जी महाराज
की
जय। श्री परीक्षित महाराज
की
जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की
जय।
अरंत कोटि सर्व संत महात्माओं की
जय।
आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विचलित निगम कल्प बल परम
श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रुणमात्रेण हर्षचित्तं समाश्रयेत् ओम शांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय श्रीकृष्णाय नमः। यथा लब्धोपचार मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि पुष्यावर रामचंद्र की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोले श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोले श्री परीक्षित जी महाराज की